عمر ميان تبي لهم تسك ميان عندنا شراكة تكشور اللي تحميل بس ما يشي ورويل ما حسي شيء تنه منو بشتم صحاب دمين بوت في سوين روبا قدام يلدات اسودا يا يسي كشتن جيدن بربن تيانا من اسود ويد قداد سوا صدي قول بكتر هري قشنا هري قشنا هري قشنا هري قشنا هري قشنا पढ़िए स्वामी वासु वही श्लोक
इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। बद्ध जीवन के कारण वे छह इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं जिनमें मन भी सम्मिलित है।
तो सनातन गोस्वामी सनातन शब्द का अर्थ है जो हमेशा रहते हैं। ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन सनातन है। सनातन का अर्थ है कि ऐसा नहीं है कि आज हम अंश हैं और कल भगवान से मर्ज हो जाएंगे। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि ज़्यादातर मायावादी लोग आपकी जो धार्मिक ईपिक्स जो सीरियल्स आते हैं ना टीवी के चैनल्स के ऊपर, तो वो लोग भी ज़्यादातर उनके जो डायरेक्टर्स होते हैं वो तो कोई आचार्य तो होते नहीं कोई, तो कोई ऐसे किसी मायावादी का सहारा ले लेते हैं और फिर लोगों को दिखाते हैं मायावाद वाला सीरियल। एक्चुअली है बहुत इफ़ेक्टिव मीडियम, हजारों लोग लाखों लोग उसको देखते हैं टीवी पर, और ज़्यादातर लोग जो लोग पढ़ते नहीं आज महाभारत वगैरह जो सीरियल है, जितना पढ़ने से लोगों को मैं इतना फेमस नहीं हुआ उतना ये सीरियल को देख करके लोक में फेमस हुआ। सारी स्टोरीज सारी कथा सारा एपिसोड्स वगैरह सब कुछ, यहाँ तक कि श्लोक भी याद रह गए भगवद गीता के। बच्चे बच्चे को याद है। आई मीन दैट मेक्स अ वेरी बिग रोल यू नो। अगर आप इसलिए श्री प्रभुपाद भी चाहते थे ऐसा कि अगर इस प्रकार का टेलीविजन के माध्यम से अगर आप कोई लीलाओं का भगवान का सीरियल्स अगर बनती है, खर्चा बहुत होता है लेकिन अगर बनता है तो दैट इज़ वेरी इफेक्टिव मीडियम टू स्प्रेड कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो ये लोग मायावादी चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं, फिर लोगों में वही धारणा चली जाती है कि भगवान के साथ अंत मिल जाता है जीव और फिर मुक्त हो जाता है। कृष्ण को युग पुरुष कहेंगे महापुरुष कहेंगे इत्यादि, वो भी निराकार ये शरीरधारी कृष्ण शरीरधारी है ऐसा कहेंगे। लेकिन भगवान कहते हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये मेरे अंश है मेरे अपने अंश है। भगवान कहते हैं जीव भूत सनातन मनसष्ठानि इंद्रियाणि, मन को भी यहाँ पर इंद्रियों के इंद्रिया बताई गई है। मन जो है उसको इंद्रियों के रूप में माना गया है। हालांकि पांच इंद्रियाँ होती है लेकिन ये सारी इंद्रियों का जो नियंता है वो मन है, इसलिए उसको भी इंद्रियाँ बताया गया है। बाकी की जो पांच इंद्रियाँ है वो इतना प्रबल नहीं है जितना मन है। मन सूक्ष्म है इसलिए उसको देख भी नहीं सकते आप। अब अगर आपकी आँख क्या कर रही है आपके कान क्या कर रहे हैं वो देखने से पता पड़ जाता है, लेकिन मन में आप क्या सोच रहे हो ये समझना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मनसस्थान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान ही कर सकती। कलश अधिकार होता है कि स्ट्रगल करना संघर्ष करना। क्यों कर्षती, कर्षति का एक दूसरा एक अर्थ है ड्रैग, कर्षण कर्षण है ना, आकर्षण कर्षण कर्षति संकर्षण भगवान का एक नाम है। तो कर्षति का अर्थ होता है खींच के ले जाना, कर्षति आकर्षित करना, जैसे मैग्नेट की तरह। तो वो कर्षति शब्द का अर्थ होता है कि उसको, जीव को ये छह इंद्रियां घसीट रही है भौतिक सुख भोग के प्रकृति स्थानीय कर्षति। सो प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम में इसके विषय में उदाहरण देते हैं। जैसे जब भगवान ये कहते हैं कि ममई वांशो, वो मेरे अंश है, ममई वांशो, तब भगवान कहते हैं कि तात्पर्य में लिखा है, प्रभुपाद लिख रहे हैं, द लिविंग एंटिटीज आर इटरनली पार्ट्स एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। श्रीमद् भागवतम से, द लिविंग एंटिटीज कॉल्ड आत्मा एंड लॉर्ड इज परमात्मा। भगवान परमात्मा है, आत्मा को ब्रह्म कहते हैं, पर भगवान को पर ब्रह्म कहते हैं या परमेश्वर कहते हैं। और जो लोग बद्ध अवस्था में है, जिसको आत्म साक्षात्कार नहीं है, उसके लिए उसका जो शरीर है छह इंद्रियों से बना हुआ, वो शरीर उसका सबसे प्रिय वस्तु होता है। और उसके शरीर से जुड़ी हुई सारी वस्तुएं उसको प्रिय बन जाती है, जैसे कि उसके उसके पुत्र परिवार इत्यादि। तो प्रभुपाद, इन शॉर्ट प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि हमारा जो आकर्षण है वो ममई वांश हो, भगवान कहते हैं वो मेरा अंश है सबके अंदर, इसलिए आपको सब आकर्षित लग रहा है। जैसे हम ये हजार बार आपको बता चुके, जैसे समझ लो कि आप किसी को मित्र बनाते हो, आपका कोई मित्र है, आपको व्यक्ति अच्छा लगता है, उस व्यक्ति को आप अच्छे लग रहे हो, सॉरी
खेल रहे बच्चे लोग खेल रहे
हैं, नहीं कुछ तोड़ दिया, पता नहीं क्या टूट गया, या तो फिर विंडो गिरा होगा शायद, कांच टूट गया,
इधर का नहीं,
इधर का ही, यहाँ से ही
लूनर इक्लिप्स, सो एनीथिंग इज पॉसिबल। तो भगवान ये कहते हैं कि हमारा किसी जीव के प्रति जो आकर्षण है उसका मूल आधार भगवान है, ममई वांशो शब्द से। क्या आधार? जैसे किसी व्यक्ति के प्रति आपका स्नेह है, आप उसको बड़ा पसंद करते हो, किंतु उसका आधार है उसके भीतर जो आत्मा है, वो है ना, शरीर नहीं। ये बात थियोरिटिकली सब जानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली भूल जाते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति मर जाता है तो वो प्रेम से वो नहीं बचता है, भले उसके डेड बॉडी को थोड़ा हाथ हिला दे के सिर पैर कर दे, वो सब ठीक है, लेकिन वो तो कितने घंटा, कुछ घंटे में तो उसका क्रियाकर्म करना पड़ता है, लेकिन उसकी वास्तविक जो आकर्षण का जो आधार है, स्रोत है, वो क्या है?
आत्मा।
किसी व्यक्ति की सुंदरता है, अगर कोई पुरुष बड़ा सुंदर है, कोई स्त्री बड़ी सुंदर है, तो उसका वास्तविक आधार शरीर नहीं है। हालांकि आपको शरीर लगता है कि गोरी चमड़ी है, अच्छा दिखने में अच्छा है, सब एवरीथिंग इज गुड, लेकिन फिर भी वो आकर्षक नहीं है। क्यों? क्योंकि वही शरीर
मृत्यु
के बाद कोई पसंद नहीं करता, सेम सेम बॉडी। तो उसकी सुंदरता का, किसी किसी शरीर की सुंदरता का भी जो मुख्य आकर्षण है, आधार है, वो आत्मा का ही है। तो इसलिए भगवान को अगर कोई व्यक्ति अपने सबसे प्रिय व्यक्ति, प्रिय मित्र बना देता है, तब जाके उसका जो उद्देश्य है वो सफल होता है। द मोर वन इज अफेक्टेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ माया, द मोर ही इज डिटैच्ड फ्रॉम द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लव। वन कैन नॉट फैक्चुअली लव एनीथिंग अनलेस ही इज फुल्ली डेवलप्ड इन लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड। जब तक कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से नहीं जुड़ा, तब तक वो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को कभी पूर्ण मात्रा में या सही मात्रा में, यू नो, डिटैच फ्रॉम द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लव, प्रेम कर ही नहीं सकता। नोबडी कैन लव एनीबडी एल्स, यू नो, द बेसिक प्रिंसिपल इज मिसिंग। व्हाट इज दैट बेसिक प्रिंसिपल? दैट लिविंग एंटिटीज आर द स्पार्क ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, दैट इज मिसिंग। So, और एक चीज यहाँ पर प्राप्त होती है, मन की शक्ति। मन की शक्ति से मनुष्य अपना भविष्य का निर्माण कर सकता है। मनस स्थान जाए प्रकृति स्थान ही कर सकती। अगर मन को अगर भगवान के शरण में लगा दिया, भगवान के चरण में लगाया, मन मना अभव मत भक्त, अगर ये बात हुई तो वो उसका कर्षति जो है, संघर्ष का जो प्रॉब्लम है, वो नष्ट हो जाएगा। हम संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि हमारा मन जो है वो भगवान के चरणों में नहीं है, इसलिए हम संघर्ष कर रहे हैं। और ध्यान से देखा जाए तो ये संघर्ष आत्मा की जो मूल आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए है। आत्मा की मूल आवश्यकता है सच्चिदानंद प्राप्त करना। आत्मा शाश्वत है, अर्थात वो मरना नहीं चाहता। अभी वो मर रहा है तो इसलिए वो उसको संघर्ष करना पड़ता है। क्यों मर रहा है? शरीर मर रहा है इसलिए। तो एक ये हो गया स्ट्रगल। फिर चेतना ज्ञानमय, आत्मा ज्ञानमय है और उसको ये जड़ शरीर प्राप्त हुआ है, डेड बॉडी, ये डेड डल मैटर, ये डल मैटर है ये। तो उसके साथ फिट नहीं है वो, कंफर्टेबल सिचुएटेड नहीं है। हमारा ओरिजिनल स्वरूप है स्पिरिचुअल, हमारी बॉडी जो है उसमें वास्तविक जो बॉडी होनी चाहिए उसमें हमारे ये विकार नहीं होते, पसीना नहीं आता, हम बीमार नहीं पड़ते, नो, दीज आर ऑल द स्पिरिचुअल फीचर्स ऑफ द बॉडी। तो दैट इज मिसिंग, देयरफॉर वी आर कर्षति, इसलिए हम कर्षति कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है आनंद। तो जीवात्मा जो है उसका मूल स्वभाव है आनंद, ब्लिसफुलनेस, और जो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है मिलना। यहाँ पर आप समझ लो कि आप कल मैं एक लेक्चर दे रहा था, तो उस लेक्चर में एक एग्जांपल मैं दे रहा था सब भक्तों को कि जो लिविंग एंटिटीज है, चाहे फिर वो डिवोटी से क्यों ना हो, उनकी जो डे टू डे लाइफ है, जैसे बिजनेस करना, जॉब करना, हाउस वाइफ, व्हाटएवर, जो डे टू डे लाइफ है, उसका बड़े ढंग से बड़े अच्छे ढंग से पालन करने का प्रयास किया जा रहा है, जो डे टू डे लाइफ है, जो जॉब है, बिजनेस है, हाउस वाइफ, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको बड़े अच्छे ढंग से प्रयास कर रहे हैं फुलफिल करने का, लेकिन उसके पीछे उसके जो मोटिवेशन है वो करने का वो एक ही है, आनंद, ब्लिस, सुख, वही है उसका मोटिवेशन, और कोई मोटिवेशन नहीं उसके पीछे। आप समझ लो कोई व्यक्ति काम कर रहा है जॉब, डिवोटी भी अगर कोई जॉब बिजनेस कर रहा है या हाउस वाइफ है, तो उस वो अगर वो ऐसा सोच रहा है कि अगर ये नहीं करूँगा या करूँगी तो मैं दुखी हो जाऊँगी, दुखी हो जाऊँगा, सुख नहीं मिलेगा, है ना। यही रीज़न है सारे कार्यों का, रीज़न एक ही है, सुख चाहते, आनंद चाहते, और जो यहाँ मिल सके मिलेगा नहीं, इसलिए कर सकते संघर्ष करो। प्रभु जी क्यों कष्ट हो रहा है, क्यों ये क्यों मन शांत नहीं रहता है, मन इधर उधर भाग रहा है, ये सब लोग बोलते हैं डिवोटीज। लेकिन जब तक भगवान हमारे परम पिता है, पहले आगे भगवान ने बताया था इस बात को, और हम उनके अंश है, वो समझेंगे नहीं, तब तक कर्षित संघर्ष चालू रहेगा, ये संघर्ष चालू रहेगा। और ये संघर्ष में जैसे माया से बद्ध हो जाते हैं लोग, बद्धात्मा जो होते हैं, उन लोग का संघर्ष इतना भारी होता है कि जन्म जन्म निकल जाते हैं, कहीं कहीं जन्म, जैसे आप जाओ सड़क पर जाओ, जो लोग आपको मिलेंगे, ज़्यादातर लोग भक्त नहीं हैं, तो उन लोगों का जन्म जन्म से संघर्ष चल रहा है, कहीं कहीं जन्मों से संघर्ष चल रहा है, आदत सी पड़ गई। वो कहते हैं ना, वो एक बार ज्योतिष के पास गया था कोई कि मुझे कष्ट जो है कितने साल आएगा, बोले नेक्स्ट 25 साल तक आपको कष्ट आएगा, बोले उसके बाद बोले आदत ही पड़ जाएगी। तो हमारी ऐसी सिचुएशन है कि इतने सालों से, इतने जन्मों से दुख भुगत रहे और कष्ट संघर्ष कर रहे हैं, तो हम सोचने लगे हैं कि संघर्ष करना ये जीवात्मा का वास्तविक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, ये जीवन की विविधता है, ऐसा मानते, दिस इज द वैरायटी ऑफ लाइफ। आई हैव सीन सम पीपल दे से अगर प्रभु जी कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा, तो जीवन में मजा ही क्या रहेगा। तो फिर हम उनको कहते हैं, लेकिन तुम्हारे जीवन में कष्ट के सिवा और कुछ है भी क्या? मजा की तो बात छोड़ो, कुछ है ही नहीं तो बचेगा क्या, केवल दुख ही दुख भुगत रहे हो। प्रभुपाद यूज़ टू से 5 दिन काम करते अमेरिका में, 5 दिन काम करते गधे की तरह, और सैटरडे संडे उड़ा देते हैं वॉक करने में। बहुत 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 वहाँ पर आप जाओ वीकेंड्स में, सब जगह एवरीवेयर सब इतना भोग करते लोग, इतना इंद्रिय भोग करते हैं इधर उधर, सब घर में कोई होता ही नहीं, सब बाहर ही होते, विदेश में यही सिचुएशन। लेकिन प्रभुपाद बताया, बोले 5 दिन काम करेगा और 2 ही दिन मिलेगा उसको भोग करने के लिए, तो बचा क्या? बोले 5 दिन तक काम करता है, बोले ये गलत हिसाब गलत लग रहा है, 5 के सामने 2 दिन। बट द पॉइंट इज देयर इज नो हैप्पीनेस, देयर इज नो हैप्पीनेस। अब देखिए, एक भी ऐसा मूवी आया अब तक बॉलीवुड या हॉलीवुड में, एक भी ऐसा मूवी आया जिसमें केवल हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस दिखाई हो, जिसमें प्रॉब्लम दिखाया ही ना हो, यू फाइंड आउट, एक भी मिलेगा आपको मूवी, कोई देखेगा ही नहीं उस मूवी को, कोई देखेगा ही नहीं, हु विल, दे डोंट, दे थिंक दैट कर्षत इज ए इटर्नल पोजिशन, संघर्ष करना ये हमारी वास्तविक स्थिति है। सो दिस इज द मैनी एग्जाम्पल्स वी कैन गिव, बट द आइडिया इज प्रकृति स्थानिक, मन जो है उसके हिसाब से उसको दूसरा शरीर प्राप्त होता है आत्मा को। तो कैसे शरीर प्राप्त करता है मन, तो उसके लिए नेक्स्ट श्लोक में एग्जाम्पल देते फिर भगवान।
इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है।
जब आपने दिए चार तो ये श्लोक में वायु और गंध निवास किया। जैसे वायु जो होता है गंध का वहन करता है, अगर उसी तरह से मन जो है उसके दर्पण पे जो भी जमा होता है उसके आधार से आपको दूसरा शरीर प्राप्त होता है। लेकिन फिर भी जो जीवात्मा है वो अलग अलग शरीर धारण करता है लेकिन उससे अलग रहता है। अब फूल, फूल के बगीचे से आप गुजरते हो तो आपको स्पेशल कोई कोई हेल्प वो कुछ ज़्यादा एंडेवर नहीं करना पड़ता, नाक में सुगंध सीधा अपने आप चला जाता है। जो उस साइड की हवा आती है तो वहाँ की खुशबू आती है, और कभी कभी क्या होता है कि गलत दिशा से हवा आती है तो बदबू आती है कहीं पर, है ना। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपके आसपास में कहीं से गलत दिशा से हवा बह रही है, कोई गंदी जगह से हवा आ रही है तो उसकी बदबू आती है आपको। हालांकि आपके आसपास में कहीं गंदा नहीं है कुछ, लेकिन दूर से हवा आ रही है जो बदबू लेके आ रही है। तो हवा जो है वो स्मेल को जैसे वाहन करती है, इस तरह से लिविंग एनिमल इन द मटेरियल वर्ल्ड कैरीज इज डिफरेंट कंसेप्शन ऑफ लाइफ फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर एज एयर कैरीज और मार। दस ही टेक्स वन काइंड ऑफ बॉडी एंड अगेन ही क्विट्स एंड इट टेक अनदर। तो हमने अभी तक कितने शरीर बदल दिए, कितने शरीर। अभी अभी समझ लो आपका पुरुष का शरीर है, किसी का स्त्री का शरीर है, अभी नेक्स्ट टाइम किसी का पुरुष का बन जाएगा, किसी का स्त्री का बन जाएगा। हमारे पहले एक भगवद्गीता का एक डीवीडी बनाया था भक्तों ने, इंटरैक्टिव डीवीडी, तो लॉन्ग बैक बहुत साल हो गया। तो उसमें आत्मा जो शरीर बदलते हैं उसका एनिमेशन बनाया था भक्तों ने। तो एक फेस होगा उसी को कंप्यूटराइज जो 84 लाख प्रकार की योनियों में घुमा रहे थे, एक ही फेस को, कभी शेर का फेस बन जाता था, कभी पुरुष का, फिर वही पुरुष जैसा दिख, बिल्कुल वैसा दिखने वाली स्त्री हो, सेम लुकिंग, केवल फर्क इतना कि वो मेल है और ये फीमेल है। फिर वैसे वो स्त्री बन जाएगी, फिर वापस कोई गधा बन जाएगा, फिर वापस बंदर बन जाएगा। तो इस तरह से 84 लाख प्रकार की योनियों में से हम गुजरते हैं। डिफरेंट कंसेप्ट हमारे जो माइंड में जो चल रहा है विचार, वास्तव में हम जो कुछ कर रहे हैं सोच रहे हैं वो सबसे नेक्स्ट बॉडी जनरेट होना शुरू हो गया है पहले से जन्म अभी तक। जब से हमारा जन्म हुआ तब से लेकर अभी तक जो भी हम सोचते हैं करते हैं जो कुछ करते हैं वो हमारा शेप बन रहा है। कुछ नेक्स्ट एक्शन करोगे कोई भी तो उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन होगा आपकी जो नेक्स्ट फ्रेम है उसमें। फिर और कुछ चेंजेस किया आपने तो आपका फ्रेम बदल जाएगा, फिर और एक चेंज किया तो और एक बॉडी चेंज हो जाएगा। सो एवरी स्टेप यू आर चेंजिंग योर फ्यूचर बॉडी। अचानक किसी ने भक्ति स्वीकार कर ली तो डिलीट मार दिया, सीधा आपको आध्यात्मिक शरीर में प्राप्त हो गया। इट इज़ ऑलवेज चेंजिंग डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज। सो आत्मा देहधारी है, हालांकि वो ऐसे शरीर बदलता रहता है लेकिन फिर भी उससे प्रभावित नहीं होता। बंदर के शरीर में जाएगा तो आत्मा तो आत्मा ही रहेगा, कौवे के शरीर में जाएगा फिर भी आत्मा रहेगा। फॉर एग्जांपल भरत महाराज, भरत महाराज वो हिरण के शरीर में गए थे लेकिन उनको पूर्व जन्म की पूरी स्मृति थी, है ना। तो हिरण का जो शरीर है वो लिमिटेड है, बोल नहीं पाते, वो कुछ कर नहीं पाते, तो वहाँ पर जाकर आश्रम के बाहर खड़े रहते थे कि जो अंदर से कुछ हवा जाए तो सुनाई देगी। अंदर से उनको प्रवेश नहीं देते नहीं थे गुरुकुल में, वो आश्रम में, तो गेट के बाहर खड़े रहते थे हिरण। जैसे कई बार आपके धाम में कोई कुत्ता होता है, घूमता रहता है सब जगह, है ना, जैसे हमने आपको एग्जाम्पल दिखाया था अभी मायापुर में, वो कुत्ता अभी 2 महीने पहले हम एग्जाम्पल बता रहे थे आपको,
जी
याद है ना,
जो
परिक्रमा होती है,
परिक्रमा में साथ साथ।
हाँ, तो जो कुत्ता है उसका लिमिटेड बॉडी है, उसको सुविधा नहीं है, सब बोल नहीं सकता, उसको प्रसाद नहीं मिल सकता ड्यूटीज का जब तक कोई उसको देगा नहीं, तो सब प्रकार की लिमिटेशंस है, लेकिन है तो उसके अंदर आत्मा ही, तो वो अलूफ रहता है सारे चेंजेस के बाद भी। मीन्स कुत्ता भौंकता है इसका अर्थ ये नहीं कि आत्मा अब भौंकना शुरू कर दिया है इसने, मीन्स वो शरीर भौंक रहा है फॉर एग्जाम्पल, सेम वे जैसे बंदर है छलांग मार के कूद रहा है, बदमाशी कर रहा है, किसी का यू नो चश्मा उतार के ले गया, किसी का यू नो पॉलिथिन फाड़ दिया, वृंदावन में करते हैं ऐसे, तो वो आत्मा, ये नहीं सोचना चाहिए कि ये आत्मा भी ऐसा सब कर रहा है, वो शरीर के अंदर लिमिटेड है, वो शरीर की क्वालिटी से ये सारी, बंदर का क्वालिटी ही है, आत्मा का क्वालिटी नहीं है, वो बंदर का क्वालिटी है, बंदर के शरीर का क्वालिटी है, तो इस तरह से वो बदलता रहता है। तो उसके आगे उसी चीज को भगवान कंटिन्यू करते हैं, वो पढ़िए।
इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान आंख जीव नाक तथा स्पर्श इंद्रिय त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है।
तो क्या होता है, अभी समझ लो उसको एक शरीर मिल गया, एक स्थूल शरीर मिल गया, उसमें उसको आँख कान जो लिस्ट बताया हुआ है वो पांचों चीज उसको मिल गई, विच आर ग्रुप अबाउट द माइंड, है ना, नाउ डज ही एंजॉय द पर्टिकुलर सेट ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट्स। ऐसे भगवान इतना स्पष्ट रूप से बताते हैं कि बाद में जैसे ये सब उसको पर्टिकुलर डिज़ायर पर्टिकुलर कंसेप्ट पर्टिकुलर उसकी जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से उसको शरीर दिया गया, जैसे कोई व्यक्ति अभी शेर बन गया, तो शेर के हिसाब से उसको उस प्रकार के आँख कान दांत उसका सब कुछ जो लिस्ट है यहाँ पर वो सब उसी हिसाब से उसको दिया गया, और अभी उसका पूरा उपयोग करके यू विल ट्राई टू एन्जॉय कर सकती है ना मटेरियल एन्जॉयमेंट, वो प्रयास करेगा उसी तरह से उसी ढंग से, उपसेवते उपसेवते का अर्थ होता है दास बन जाता है वो, भाग सेवते स्लेव स्लेव बन जाता है वो, उपसेवते वो इंद्रियों का दास बन के फिर काम करता है सब। कोई भी आप यू कैन स्टडी डिफरेंट स्पीसीज, जैसे शेर का उदाहरण आप देख सकते हो, फिर कुत्ता है तो उसको विशेष प्रकार के कान मिलते हैं कि आप इधर वो हम नहीं सुन सकते, वो सुन सकता है कान, कुत्ता सुन सकता है, फिर कुछ उसको देखने का भी कुछ स्पेशल फैसिलिटी मिलता है कि जो इनविजिबल मनुष्य के लिए जो इनविजिबल होता है अदृश्य होता है वो कुत्ते के लिए कई चीज़ विजिबल होती है, वो देख सकता है कुत्ता देख सकता है उस चीज़ को, तो ऐसे कई चीज़ें हैं कि उसको पर्टिकुलर सेट मिलता है इंद्रियों का, लेकिन उसकी सोच भी उसी तरह से, मन भी उसको मिलता है, उसके छः चीज सब उसको उस तरह से मिलता है कि वो कि जितने भी गाड़ी के टायर है उसके ऊपर रुशो मारना ये उसका यू नो ये नेचर है उसका, ये उसका स्वभाव है। आप उसको पूछोगे कि व्हाई यू आर डूइंग दिस, ऐसा क्यों कर रहे हो, हैं दैट इज माय सीरियस बिजनेस, ये सीरियस बिजनेस है एंड एक्चुअली इज डूइंग यू नो उसका डेली ड्यूटी है ये तो, ही इज वेरी सीरियसली डूइंग इट, और उसमें उसको लगता है कि ये नहीं करूँगा तो मेरा निर्वाण ही होगा. सो ही हैज टू बाइंड मेक द बाउंड्री, दिस इज माय एरिया. सो द आइडिया इज, आई एम जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये स्पीसीज है, कुत्ते का स्पीसीज है, फिर शेर का दिया, ऐसा आप अपने हिसाब से अंदाज लगा सकते हो. यू नो कबूतर का है, कौवे का है, छिपकली का है, कॉकरोच का है, सबका अंदाज लगा सकते हो कि दिस सेंसेस एंड माइंड दे आर गिवन अकॉर्डिंग टू देयर डिजायर एंड नाउ दे आर डूइंग अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी टू डू एग्जैक्टली एज पर व्हाट दे वांटेड. सो दास इंद्र का दास बन के फिर उसको भोग करता है. जैसे प्रभुपाद एग्जांपल लेते हैं, यू नो वृत्तियों के अनुसार शरीर मिलता है. जैसे कोई व्यक्ति को पानी में रहना बहुत पसंद है. हमारे एक डीओटी मुझे मिले थे, बोले मैं जब बहुत छोटा था एक भक्त मुझे मिले थे विदेश में, तो बोले मैं जो छोटा था, छोटा मीन्स बहुत छोटा, 4-5 साल का होगा शायद, वो तब मैंने ये सरोवर में डुबकी लगा दी थी और स्विमिंग करना शुरू, किसी ने सिखाया नहीं था मुझे और मैं स्विमिंग कर रहा था. तो मेरे पेरेंट्स भी सोचने लगे, बोले ये है कौन, 4-5 साल का बच्चा है और स्विमिंग कर रहा है. और बोले पानी मुझे बहुत पसंद है, पानी में रहना, पानी के साथ खेलना, पानी में जहाँ पर भी मैं उनके साथ गया था अलग अलग जगह, तो जहाँ नदी सरोवर कुछ भी मिल गया, झरना वरना कुछ भी मिल गया, वहाँ पर रेडी तुरंत चले जाते. तो मैंने उनको आस्ते आस्ते कहा, हो सकता है पूर्वजन्म में आप एक्वेटिक होंगे, पूर्वजन्म में आप कोई मत्स्य होंगे. जब जो आपकी वृत्ति होती है उसी हिसाब से प्रभुपाद कहते हैं कि किसी को कहीं, जैसे मॉडर्न अभी सिविलाइजेशन जैसा है वेस्टर्नाइज, जिसमें लोग कम कपड़े पहनना पसंद करते हैं, तो जितने कम कपड़े पहनते हैं वो सोचते हैं कि हम अधिक सुंदर दिखते हैं. हालांकि ऐसा होता नहीं है, वो ऐसा मानते हैं. तो होता क्या है कि प्रभुपाद बता रहे कि जिसको कपड़े पहनना पसंद नहीं है, भगवान उसको स्पेशल कृपा करते हैं कि नेक्स्ट बॉडी आपको कौन सी मिलेगी, पेड़ की मिलेगी, कोई कपड़े की आवश्यकता नहीं, खड़े रहो नंगे हजारों सालों तक, ठंडी गर्मी जो भी आता है सबको सहन करो. सो दे आर लाइक दिस सेम वे, जिसको जैसा चाहिए, जिसको ऊपर आकाश में से पर्वत के ऊपर जाता है फिर ऊपर से डाइव लगाता है, क्या बोलते हो उसको, स्काई डाइविंग है ना, करेगा वो. फिर जैसे इधर तो शायद पता नहीं, बहुत कम जगह होता होगा इंडिया में, और यह जगह ही नहीं ऐसे कोई कूदने के लिए, बहुत शायद नॉर्थ में होता होगा या फिर महाराष्ट्र का साइड कहीं होता होगा समवेयर, बट विदेश में से बहुत जगह होता है. ये तो पूरा हिल पे बना, अमेरिका यूरोप सब कुछ हिल पे बना हुआ है, तो बहुत दिखता है ऊपर से. आप हाईवे से जा रहे हो, ऊपर से कोई आपके ऊपर से ऐसे जा रहा है, ऐसे दिख रहा है. सो व्हेन समबडी इज वेरी फॉन्ड ऑफ, ठीक है इतना भी क्या हवा में उड़ना है, तो पक्षी बन जाओ फिर, यू नो. सो भगवान बहुत स्पेशल कृपा करते हैं अपनी आपके आपकी इच्छाओं के आधार से. तो ये इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों का दास बन करके, हमारी इच्छाओं के अधीन बन करके हम प्रकृति के साथ संघर्ष करते रहते हैं. हम हमारे अस्तित्व का संघर्ष करते हैं, लेकिन हम इस चीज को समझ नहीं पाते. अलग अलग शरीर बदलते हैं, कोई आपको कहेगा कि भाई तुम्हें, तुम कुत्ता बनोगे, है ना, बहुत अगर इस बात की चर्चा करो, इस विषय में सोचोगे, अब किसी को बताओगे कि तुम्हारा नेक्स्ट जन्म ऐसा होगा, यू नो. जैसे अभी आधे घंटे पहले, एक घंटे पहले मदर से मैं बात कर रहा, तो वो किसी और की बात कर रहे थे, तो मेरे मदर ऐसे उस व्यक्ति को कहा था, रिलेटिव होंगे कोई, तो उनको बोला था कि इतना अगर आप ये सोचते रहोगे तो तुम सांप बनोगे अगले जन्म में। ऐसा माता जी ने उनको बोला था। मिस वो घर घर का वो पकड़ के रखते ना, बोले मैं घर मेरा है वगैरह वगैरह, तो ऐसा माता जी ने बोल दिया तुम्हें ऐसा आसक्त रखोगे तो सांप बनोगे अगले जन्म में। लेकिन सामने वाले व्यक्ति को इसका कोई परवाह नहीं होता, इसका कोई परवाह नहीं होता। क्यों? क्योंकि विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, जो मूढ़ व्यक्ति होते हैं वो समझ नहीं पाते, उसको समझाने पर भी नहीं समझ सकते। वो नेक्स्ट श्लोक में बताया, पढ़िए।
मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग करता है, न ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से ज्ञान में प्रशिक्षित होती है वह यह सब देख सकता है।
श्लोक पढ़िए।
उत्क्रामन्त स्थितं वापि
भुजानं
वा गुणान्वितं पश्यन्ति
पश्यति ज्ञान चक्षुषा।
तो प्रभुपाद इस श्लोक को बार बार यूज करते थे, विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, जो मूढ़ है वो नहीं समझ सकते, विमूढ़ा नानुपश्यन्ति। श्लोक अगेन, उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं गुणान्वितं भुञ्जानं उत्क्रामन्त शरीर त्यागते हुए, उत्क्रामन्ते स्थितं शरीर में रहते हुए त्याग, उत्क्रामन्तं स्थितं वा अपि भुञ्जानं वा गुणान्वितं। ये अलग अलग पोजिशन बताइए। उत्क्रामन्त का अर्थ क्या है? शरीर चेंज करते हुए। स्थितं का अर्थ है किसी शरीर के भीतर। भुंजानम का अर्थ है क्या? भोग करते हुए। और गुणान्वितम का अर्थ है प्रकृति के गुणों के अधीन। इस सारी स्थितियों के समय भी व्यक्ति जो है वो विमूढ़ जो होता है वो देख नहीं सकता कुछ, विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, विमूढ़। वी का अर्थ होता है स्पेशल, वी मीन्स कोई स्पेशल होता है उसको वी बोलते हैं, मूड और विमूड। मूड का अर्थ होता है मूर्ख और विमूड का अर्थ होता है स्पेशल मूर्ख, फर्स्ट क्लास मूर्ख। तो विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, वो नहीं देख सकते किस तरह से भोग करता है, वो नहीं समझ सकते प्रकृति के गुण का अध्ययन रहकर ये किस तरह से शरीर का भोग करता है। ये केवल ज्ञान चक्षु वाले लोग ही देख सकते हैं। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, भक्त लोग के पास ज्ञान चक्षु होते हैं, है ना। अब कई बार कहते हैं ना, भक्त लोग के पास जाएंगे किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देते भक्त, क्योंकि उनके पास ज्ञान चक्षु होते हैं, किसी भी चीज़ को शास्त्र के आधार से बता सकते हैं, शास्त्र पढ़े हैं सुने हैं तो ज्ञान है उनके पास, तो उसके आधार से वो स्थिति को वो एनालाइज कर सकते हैं, सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हैं, सिचुएशन का पूरा तोल करके उसका क्या परिणाम है वो समझ सकते हैं। जैसे हमारे आचार्यों ने विशेष करके प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवत में कई ऐसे एपिसोड है जो सिचुएशन भौतिक संसार की जो सिचुएशन विशेष करके भक्तों के जीवन में आते हैं जो सिचुएशंस, वो सारी सिचुएशंस को डिटेल में डिस्क्राइब किया है प्रभुपाद ने, तात्पर्य में बहुत अच्छे ढंग से। अगर कोई उस तात्पर्य को ढंग से पढ़े एक एक लाइन को श्रीमद् भागवतम के, तो उसको ये आप जो वैष्णव एटिकेट सीखने की आवश्यकता है उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। इतना परफेक्टली प्रभुपाद तात्पर्य बताया है सब जगह भागवतम में, अगर कोई उसको पढ़ता है तो वो किसी भी प्रकार के गलतियाँ से बच जाता है, गलती कर ही नहीं पाएगा, बिकॉज यू नो एवरीथिंग। शास्त्र चक्षु, श्री प्रभुपाद हरेक वस्तु का सॉल्यूशन दिया क्योंकि शास्त्र चक्षु का आधार है, और ये शास्त्र चक्षु ही है जो हम प्रचार के माध्यम से दूसरों को देना चाहते हैं कि मूर्ख हो तुम, भोग कर रहे हो, दुखी हो रहे हो, पढ़ो भगवद गीता को, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, पढ़ो इसको, శాస్త్ర చక్షుషు కాదు లేకన్ విముఢ నాను పశ్యంతి మరొక వ్యక్తి జో హోతా హై ఓ సమజ్ నహీ ఆతా తాత్పర్య పడియే
జ్ఞాన చక్షు శబ్ద అత్యంత మహత్వపూర్ణ హై బినా జ్ఞాన కే కోయి నా తో యహ సమజ్ సకతా హై కి జీవ ఇస్ పర్ ఇస్ శరీర కో కిస్ ప్రకార త్యాగతా హై నహీ యహ కి వహ అగలే జీవన మే కైసా శరీర దాన కర్నే జా రహా హై అథవా యహ కి వహ విశేష ప్రకార కే శరీర మే క్యో రహ రహా హై ఇస్కే లియే పర్యాప్త జ్ఞాన కి ఆవశ్యకతా హోతీ హై జిసే ప్రామాణిక గురు సే భగవద్ గీతా తథా అన్య ఐసే హీ గ్రంథో కో సునకర్ సమజా జా సకతా హై జో ఇన్ బాతో కో సమజ్నే కే లియే ప్రశిక్షిత హై వహ భాగ్యశాలీ హై ప్రత్యేక జీవ కిన్హీ పరిస్థితియో మే శరీర త్యాగతా హై జీవిత రహతా హై ఔర్ ప్రకృతి కే అధీన హోకర్ భోగ కర్తా హై ఫలస్వరూప్ వహ ఇంద్రియ భోగ కే భ్రమ మే నానా ప్రకార కే సుఖ దుఃఖ సహతా రహతా హై ऐसे व्यक्ति जो काम तथा इच्छा के कारण निरंतर मूर्ख बनते रहते हैं अपने शरीर परिवर्तन तथा विशेष शरीर में अपने वास को समझने की सारी शक्ति खो बैठते हैं वे इसे नहीं समझ सकते किंतु जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान हो चुका है वे देखते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है और यह अपना शरीर बदलकर विभिन्न प्रकार के भोगता रहता है ऐसे ज्ञान से युक्त व्यक्ति समझ सकता है कि इस संसार में बद्ध जीव किस प्रकार कष्ट भोग रहा है अतएव जो लोग कृष्ण भावनामृत में अत्यधिक आगे बढ़ चुके हैं वे इस ज्ञान को सामान्य लोगों तक पहुंचाने में प्रयत्नशील रहते हैं क्योंकि उनका बद्ध जीवन अत्यंत कष्टप्रद रहता है उन्हें इनमें से निकल कर कृष्ण भावना भावित होकर आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए अपने को मुक्त करना चाहिए
हाँ तो वही बात बताई श्री प्रभुपाद ने जो हम चर्चा किए संक्षेप में कि हम ज्ञान चक्षु से जो आगे बढ़े हुए भक्त है वो बैठे नहीं रहते उसका दूसरों को दान देते ज्ञान चक्षु लेकिन हम भक्तों का ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम ज्ञान चक्षु को विकसित करें ज्ञान चक्षु भक्तों के पास होना बहुत आवश्यक है जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है वैसे वैसे समस्याएँ बढ़ेगी अगर आपके पास ज्ञान चक्षु नहीं होंगे तो आप उस समस्याओं से परेशान हो जाओगे तो इसलिए भक्तों को ज्ञान चक्षु प्राप्त करने का उपाय क्या है उपाय क्या है
शास्त्र को पढ़े गुरु से शिक्षा ले
और
सत्संग करे
भक्तों की संगति करे अधिक से अधिक संगति करनी चाहिए भक्तों कई बार हम प्रश्न पूछते हैं ना डिवोटीज को लेक्चर के बाद कोई प्रश्न है किसी को आप पूछोगे तो अहमदाबाद में तो जनरली कंसेप्ट ही नहीं है क्वेश्चन आंसर का लेकिन और सब मंदिरों में आप जाओ विदेश में तो विशेष करके कि स्पेशल टाइम अलॉट किया जाता है क्वेश्चन आंसर के लिए बिकॉज सब इतने सारे प्रश्न पूछते हैं अब ये प्रश्न पूछने का अर्थ क्या होता है कि यू आर इंक्विजिटिव टू नो मोर अबाउट दैट सब्जेक्ट मैटर उस विषय पर अधिक जानने का इच्छा है ना तो ये अच्छी बात है और यू आर थॉटफुल सोच रहे हैं मुझे भी ऐसा लगता था जब मैं नया नया जुड़ा था मुझे भी ऐसा ये क्वेश्चन हर एक जगह बोलते एनी क्वेश्चन और मुझे कभी कोई क्वेश्चन होता ही नहीं आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग दिस But then, when I started spending time, then I found कि चाहे आप उसी विषय को अच्छी तरह से जानते भी हो उस विषय को सब्जेक्ट मैटर को पूरी तरह से जानते भी हो but your thinking process is continuously going on while you are hearing. अगर आप concentration से सुन रहे हो प्रवचन को तो आपकी thinking process पूर्ण रूप से जागरूक है निरंतर सोच रहे आप उस समय आपको क्वेश्चन ऑटोमेटिक क्रिएट होगा व्हाट अबाउट दिस समटाइम यू वांट टू गेट अप्रूवल फ्रॉम द अथॉरिटी यू नो सर्टेन थिंग्स बट यू वांट टू कंफर्म रीकन्फर्म दैट दिस इज व्हाट आई थिंक इज इट ट्रू मैं ये सोच रहा हूँ क्या ये सही है So this way, there should be इम्प्रूवमेंट ऑफ ज्ञान चक्षु, वन शुड इम्प्रूव द ज्ञान नॉलेज। तो आप सब भक्तों के ज्ञान चक्षु शास्त्र चक्षु बोल रहे इसको, शास्त्र चक्षु जो आपका भक्ति शास्त्र का एक एम है, शास्त्र चक्षु प्राप्त करना। इसलिए दूसरी उसको दूसरे बोलते हैं पश्यन्ति कर्ण चक्षु, सब भी बोलते
हैं
हाँ कर्ण चक्षु। कर्ण चक्षु में सुनने से मीन सेम थिंग, ज्ञान चक्षु कर्ण चक्षु सुनने से, पश्यन्ति कर्ण चक्षु और कान की आंखों से देखते हैं भगवान के महिमा को, भगवान के धाम को कर्ण चक्षु से देखते हैं। सुनने से देखने से क्या, आप प्रभुपाद कहते हैं कि वैसे भी वृंदावन में बहुत सारे बंदर हैं, तो अगर थोड़े बंदर बढ़ जाएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ लोग गए थे प्रभुपाद का लेक्चर छोड़ करके राधाकुंड गए थे, और फिर जब प्रभुपाद के पास आए बड़े खुश होकर प्रभुपाद का, प्रभुपाद हम राधाकुंड गए थे, सोचा कि प्रभुपाद खुश हो जाएंगे। प्रभुपाद कहेंगे वेल डन हो मेरे बच्चे, तो वहाँ पर राधाकुंड चला गया, यू आर सो एलिवेटेड, यू आर सो एडवांस, यू नो ऐसे प्रभुपाद कहेंगे। प्रभुपाद ने कहा कि ऑलरेडी वृंदावन में बहुत सारे बंदर है, तो मुझे दो बंदर एक्स्ट्रा नहीं चाहिए था, दो लोग थे, तो प्रभुपाद ने कहा मुझे दो बंदर नहीं चाहिए एक्स्ट्रा। और फिर प्रभुपाद ने कहा कि जब तुम्हारा गुरु यहाँ पर प्रवचन दे रहा है तो तुम ये सोचते हो कि तुम राधाकुंड जाके राधा रानी का कृपा मिलेगा आपको, संभव ही नहीं है। इसका अर्थ है कि गुरु जहाँ पर है, जहाँ पर श्रवण भागवत का चर्चा हो रहा है, उससे अधिक ज्यादा कोई बड़ा तीर्थ हो ही नहीं सकता है ना। कोई भक्त लोग कहते हैं हम तीर्थ यात्रा जाते हैं, हम गुरु इधर होंगे और वो भाई साहब जाएंगे और कहीं, भाई क्यों कहाँ पर थे, प्रभु जी एक सेवा था। भाई क्या सेवा भाई, तुम्हारे गुरु जी तुम्हारे यहाँ पर प्रवचन दे रहे हैं और तुम गुरु जी का प्रवचन नहीं सुनते और सेवा के लिए चले जाते हो। आई मीन ऑफकोर्स अगर आपको गुरु जी ने ही बोला है सेवा तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन गुरु का मुख से जो वाक्य निकलता है दैट इज ज्ञान चक्षु, यू मस्ट गेट इट, दैट क्वालिटी वी हैव टू इम्प्रूव। तीन दिन चार दिन पहले मैं एक अपने मंदिर में किसी वरिष्ठ भक्त से चर्चा कर रहा था, तो हमने ये निष्कर्ष निकाला कि भक्तों का स्टैंडर्ड्स जो क्वालिटीज है वो मेंटेन नहीं कर पा रहे, और आगे फिर लीडर बन जाते हैं इमेच्योर हो करके, और फिर आगे लीडर बनने के बाद तो फिर जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, और फिर सामने किसी को सिखा नहीं पाएंगे अच्छी क्वालिटी, तो मास जो होगा नेक्स्ट आगे आने वाला वो पूरा कच्चा पैदा होगा, और फिर उसमें से अगर कोई लीडर बनेगा तो बाह है ना, और डाइल्यूट हो जाएगा पूरा, है ना। तो आप सोचो कि ये कितनी बड़ी समस्या हो जाएगी भविष्य में, देयर वुड बी ग्रेट प्रॉब्लम। तो इसलिए भक्तों को एक ज्ञान चक्षु रखना पड़ेगा। अगर आप इस आप अपने लेवल पर इस ज्ञान चक्षु को विकसित नहीं करोगे तो आप आने वाली पीढ़ी को क्या सिखा पाएंगे। ये नहीं सोचना है प्रभु जी हम थोड़ी ना लीडर है, हम थोड़ी ना प्रचार करते, लीडर तो सीनियर होते हैं वरिष्ठ होते हैं, हम तो अभी अभी नए नए हैं। लेकिन क्या आपको हमेशा इसी स्थान में रहना है, इसी अवस्था में रहना है, आगे बढ़ना ही नहीं है। तो अगर आगे बढ़ना है तो ज्ञान चक्षु रखना पड़ेगा, ज्ञान चक्षु का पालन करना पड़ेगा। आप इसको विकसित करोगे फिर आप भी प्रभुपाद की सेवा करोगे ना, क्यों केवल वरिष्ठ भक्ति क्यों करेंगे सेवा, वरिष्ठ कब तक रहेगा। इसलिए आप सब भक्तों को वरिष्ठ भक्त बनना ही सोच लो, आप सब भक्तों को ज्ञान चक्षु विकसित करना ये सोच लो, आप सब भक्तों को आने वाली पीढ़ी को श्री प्रभुपाद का सही संदेश देना है ये सोच के आगे बढ़ो। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा इस चीज को। Therefore, we must read Srila Prabhupada books every day. रोज पढ़ना चाहिए। एक भक्त मुझे मिले थे, आप अंदाज नहीं लगाओगे कितने सालों से डेली 3 घंटा पढ़ते Srila Prabhupada की पुस्तक, रोज 3 घंटा पुस्तक पढ़ता, सोचो उनका बुद्धि कैसा होगा। डेली अगर 3 घंटा कोई प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ता हो, हाउ शार्प ही वुड बी, है ना। तो हमें प्रयास करना चाहिए ये ज्ञान चक्षु विकसित करने के लिए। अगर जिसके पास शास्त्र का ज्ञान नहीं है, जो विमूढ़ है, साक्षात्कार नहीं किया जिसने, या साक्षात्कार नहीं कर रहा, उसका क्या परिणाम आएगा? वो 11 टेक्स्ट में है, पढ़िए।
आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते हैं कि क्या हो रहा है।
यदन तो अप्य कृता आत्मानो नयनम पश्यन्ति अचेत अस्ता, प्रयत्न करने के बाद भी नहीं देख पाते कि हो क्या रहा है। भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जिसके पास ज्ञान चक्षु नहीं है, उसका प्रयास भी विफल हो जाते हैं। जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट वगैरह जो है, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग। तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं आजकल ऐसे कई तथाकथित योगी हैं और योगियों के तथाकथित संगठन है, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में शून्य है। कुछ आसन में व्यस्त रहते हैं, यदि उनका शरीर सुकठी से अस्वस्थ हो गया तो संतुष्ट हो जाते, उनके पास कोई जानकारी होती नहीं इसके अतिरिक्त। तथाकथित योग पद्धति का प्रयास करते हैं, प्रभुपाद बहुत स्पष्ट रूप से बता रहे हैं सब चीज को। अर्थात दूसरे शब्द में जो भक्ति योगी है वही समझ सकते हैं कि सब कुछ कैसे घटित होता है, व्हाट इज व्हाट, किस तरह से क्या चीज कैसे कार्य कर रही हो, तभी समझ सकता है वो व्यक्ति। सो लेकिन जिसके पास ज्ञान नहीं है, जैसे विमूढ़ था, वो देख नहीं पाता, ज्ञान चक्षु वाला है, लेकिन जिसके पास ज्ञान चक्षु ही नहीं है, तो उसके लिए कोई ऑप्शन है क्या, दूसरा कोई तरीका है जिससे वो समझ सकता है भगवान को? हाँ, एक तरीका है। क्या है तरीका? वो अगले श्लोक पर है।
सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है, चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है।
तो भगवान क्या कहते हैं यहाँ पर? वो लोग देख सकते हैं परमात्मा के रूप में मुझे, सर्वव्यापी। ये अगर आप भगवान को नहीं जानते, कोई बात नहीं, सूर्य का जो तेज है, अगर वो तेज नहीं होगा, वो लाइट ऑन नहीं होती सुबह 6:30-7 बजे, यू नो, सूर्य की, तो आप ये क्या देख पाएंगे? आप सड़क नहीं देख सकते, आपका खाना भोजन कहाँ पर है वो नहीं देख सकते, आप ये पर्वत सरोवर नदी समुंदर कुछ भी नहीं देख सकते। सूर्य प्रकाशित होता है, सब कुछ देख सकते हो, यू नो। सूर्य भगवान कहते हैं कि उसका जो तेज है वो मैं हूँ, और द स्प्लेंडर ऑफ द मून द स्प्लेंडर ऑफ फायर आर ऑल्सो फ्रॉम मी। और इसके विपरीत भगवान ने क्या कहा था? भगवान के धाम में सूर्य चंद्र और अग्नि की आवश्यकता
नहीं।
सो अभी यहाँ पर सूर्य और चंद्र को तेज के लिए उपमा दी है, तेज के कारण उसका तेज भगवान कहते हैं वो मैं हूँ। लेकिन तात्पर्य प्रभुपाद ये भी कहते हैं जो अगले श्लोक में आते, चंद्रमा के प्रकाश से सारी वनस्पति पोषित होती है, चंद्रमा का प्रकाश इतना आनंदप्रद होता है कि लोग सरलता से समझ सकते कि वे भगवान कृष्ण की कृपा से ही जी रहे हैं। उनकी कृपा के बिना न सूर्य न चंद्रमा न अग्नि न और सूर्य चंद्रमा अग्नि के बिना हमारा जीवन ही संभव नहीं है। बद्ध जीव में कृष्ण भाव जगाने के ये कतिपय विचार है। आप बता सकते हो कि सूर्य चंद्र अग्नि ये भगवान के द्वारा आते हैं और इस तीनों के बिना मनुष्य जीवन संभव नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी यूज कर ले, कुछ भी कर ले, ये तीन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हम लोग जानते नहीं है कि मून का क्या इफेक्ट होता है। हम ऐसा सोचते हैं कि मून के अंधेरे में मून की तो आवश्यक लाइट की तो आवश्यकता होती नहीं है, आजकल हेलोजन इतनी बड़ी होती, मुंह का प्रकाश क्या हो सकता है कुछ लोग, लेकिन इसका मूल उद्देश्य तो जानते हैं नहीं। ये चंद्र जो है अगर वो नहीं होता तो आपके भोजन में जो स्वाद है ना वो नहीं आएगा, स्वाद नहीं आएगा। अभी वो ये हमारे लोगों को पता नहीं है, भौतिकवादी लोगों को। अभी आज ही अभी इक्लिप्स ख़त्म हो गया ना अब तो, हाँ इक्लिप्स तो ख़त्म हो गया। तो ये मून जो है वो डायरेक्ट वनस्पति में स्वाद डालते हैं। जैसे आप कोई फल लाओ, कोई भी फल ले लो, संतरा ले लो, तो उसका जो मूल स्वाद है वो चंद्रमा के माध्यम से आता है, बाकी उसमें स्वाद नहीं आता। वो सुगंध जो है, हमने वो पढ़ा था आपको शायद पता हो तो पहले, है ना, इफ यू रिमेम्बर अर्लियर, पृथ्वी जो है वो गंध का आधार है। लेकिन देखो भगवान की योजना से एक ही बगीचे में अलग अलग फूल उगते हैं और सबकी फूल सबकी सुगंध अलग अलग होती है। इसका मूल आधार है पृथ्वी और पृथ्वी में से उगता है, लेकिन सबकी सुगंध अलग अलग है। स्वाद में भी चंद्रमा सबको प्रदर्शित, लेकिन कोई खट्टा होता है, कोई मीठा होता है, ऐसे। तो चंद्रमा पोषण देता है, नरिशमेंट करता है। तो सूर्य चंद्र और अग्नि, अग्नि भी चाहिए हमें, क्योंकि अग्नि के बिना कुकिंग ही नहीं कर पाएंगे। अग्नि घर के अंदर भी चाहिए, पेट के अंदर भी चाहिए। वो आएगा अभी नेक्स्ट श्लोक में, पढ़िए।
मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ।
प्रभुपाद कहते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में, जिस जिन भगवान की शक्ति प्रत्येक लोक को उसी तरह थामे रहती है, जिस प्रकार धूल को मुट्ठी में बंद रहने पर धूल के गिरने का भय नहीं रहता। अगर आपने मुट्ठी में धूल पकड़ ली है हाथ में तो गिरेगी नहीं, हाथ में है, लेकिन मुट्ठी जो ही धूल को वायु में फेंक दिया जाता है वह नीचे गिर जाती है। इसी प्रकार सारे लोग वायु में तैरते हैं, वास्तव में भगवान के विराट रूप की मुट्ठी में बंद है। अर्थात ये सारे जो ग्रह है वो सारे ग्रहों को भगवान पूरा वो उसको हवा में तैरता रखते हुए, व्हाट इज द ट्रांसलेशन, आई एंटर into each planet and by my energy they stay in orbit में stay करते हैं, otherwise गिर जाएंगे। शंकरशाह that he is holding everything, आकाश में तैर रहे। so और भगवान आगे कहते हैं चंद्रमा use of the life of all vegetables, मैं ही चंद्रमा के रूप में सारे जो जूस है जो वेजिटेबल्स है उसमें रस प्रदान करता हूँ। श्री प्रभुपाद एक जगह भागवत में लिखते हैं, बिकॉज द मून इज फुल ऑफ potentialities, it represents the influence of the Supreme Personality of Godhead. The moon is the predominating deity of everyone's mind. मन जो है उसका जो प्रतिनिधित्व करता है वो है चंद्रमा, जैसे हमने लास्ट टाइम आपको बताया था, ये है ना, इफ यू रिमेम्बर। न शशांको न पावको वाला श्लोक, जिसमें न तद्भासे थे सूर्यो न शशांको न पावको, आँखों से जीवा से और मन से भगवान के धाम का वर्णन नहीं हो सकता। भौतिक आँखों से, भौतिक जीवा से और भौतिक मन से भगवान के धाम का वर्णन नहीं हो सकता। तो ये तीनों के वो है मूर्ति है। तो मन का जो रिप्रेजेंटेटिव डेमिगॉड है वो है चंद्रमा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मनोमय, मन गॉड इज कॉल्ड मनोमय एंड इट इज कॉल्ड ऑल्सो अन्नमय बिकॉज सारे जो सब्जियां है उसमें रस प्रदान करने का काम चंद्रमा का है, इसलिए उसको अन्नमय बोलते हैं। और चंद्रमा देवताओं को, मनुष्यों को, पशुओं को, पक्षियों को, वृक्षों को, सबको प्रसन्न करता है, इसलिए उसको सर्वमय भी बोलते हैं। सबको पसंद आता है, एवरीबडी लाइक्स मून, है ना, सबको अच्छा लगता है चंद्रमा। शहर में ये सब अनुभव नहीं होता, लेकिन आप गांव में जाओगे तो गांव में चंद्रमा को वेलकम किया जाता है,
बच्चों को खिलाते भी है गार गार करके।
हाँ,
चंद्रमा को,
चंद्रमा की शीतलता का हमें अंदाज ही नहीं कि चंद्रमा की शीतलता क्या होती है। ये आपका जो शरद पूर्णिमा का जो खीर होती है ना, वो फ्रिज में नहीं रखते आजकल लोग, रेफ्रिजरेटर में रखना शुरू कर दिया। ठंडा, प्रभुपाद कहते हैं कि ठंडा होना चाहिए खीर, गर्म नहीं होना चाहिए कभी भी। खीर ऐसी चीज़ है जो गर्म नहीं खाई जाती, वो ठंडी ही खाई जाती है, ऐसा नियम है। तो प्रभुपाद बताया कि वो जो ठंडा खाने का जो है खीर, दैट इज़ नॉट इन योर रेफ्रिजरेटर, वो मून के सामने उसको रखा जाता है। तो मून की शीतलता और उसका रस, उसका मधुरता उस खीर के अंदर मिलता है, देन इट टेस्ट, यू नो, वो फ्रिज में कभी आएगा नहीं। वो फ्रिज में ठंडा रहेगा लेकिन स्वीटनेस नहीं आएगी, लेकिन चंद्रमा के सामने रखोगे तो ठंडा भी बनेगा और मीठा भी बनेगा। नाउ पीपल में इमेजिनेशन, नो बट इट इज ट्रू, चेक करके देखना, देखो इट इज ट्रू। हम लोग भी करते थे गुजरात में सब लोग, लेकिन अब बंद हो गया। स्काई स्क्रैपर बस, स्काई लाइन सब बने पड़े, चंद्रमा दिखता ही नहीं कहीं पर। कहाँ पर खीर दिखाओगे, बोले कहाँ पर है। मैंने मम्मी अभी बता रहे, बोले इक्लिप्स, इक्लिप्स है, बोले यही सब जगह बड़े बड़े टावर है, कहाँ पर चंद्रमा दिखने वाला इधर। तो चंद्रमा जो है, भगवान कहते हैं उससे अच्छा खाना बनता है। अभी वो खाना जो है, देखो सूर्य भगवान के एग्जांपल भी कैसे चुनते हैं, एक करके। पहले सूर्य का उदाहरण दिया, चंद्रमा का उदाहरण दिया, अब देखो क्या उदाहरण दे रहे हैं, आगे पढ़िए।
मैं समस्त जीवों में, जीवों के शरीर, मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि विश्वनाथ हूँ, और मैं श्वास प्रश्वास प्राणवायु में रहकर चार प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ।
चार प्रकार का अन्न कौन सा होता है? दाल, गेहूँ, चावल, क्या
जूस के खाने वाले हैं?
हाँ, यस, दो हुआ,
चाटना,
पीना,
पीना।
ये चार प्रकार के अन्न को भगवान कहते हैं मैं पचाता हूँ, पचंती अन्नम चतुर्विधा, चार प्रकार के, चूसना, चबाना, पीना और चाटना। और भगवान को ये चारों प्रकार के अन्न भगवान को ऑफर किए जाने चाहिए, चूसने के लिए भी होना चाहिए कुछ भगवान के लिए, जैसे नींबू है या फिर जो चूस सकते हो आप, गन्ना है या
हाँ
आम है, कुछ भी है, मैनी थिंग्स देखना चाहिए हमें। हाँ, कैंडी, ठीक है, कैंडी। और फिर चैटने में नहीं आएगा, चैटने में रखेंगे ना उसको, कुछ चैटने वाला हो, जैसे चटनी है, हनी है, तो ये सारी चीज़ भगवान को भोग लगनी चाहिए, चाटने वाला भी होना चाहिए। हम देखा है कई जगह, कई मंदिरों में इसको फॉलो किया जाता है कि भगवान के प्लेट में सब होगा, चटने का होगा, चूसने वाला भी होगा, पीने वाला भी होगा और चबाने वाला, चारों प्रकार की चीज़ भगवान को ऑफर होते डेली राजभोग में। सो यू शुड ट्राई टू ऑफर दैट वे, अब कहें प्रभु ये भी रोज़ चटनी कैसे बनाए, रोज़ कहाँ से लाए आम, ठीक है घर की अब अलग बात है, बट द आइडिया इज चार प्रकार के अन्न को मनुष्य पचाते हैं। पहले तो स्वाद चाहिए था, तो चंद्रमा के ओर से स्वाद आ गया, ठीक है। इतना अच्छा अच्छा खाना प्रसाद खाओ खाओ, लेकिन वो डाइजेशन नहीं होगा तो खाना वो भी प्रॉब्लम हो जाएगी ना, डाइजेशन। खाना भी हमारी समस्या बन सकती है, ईटिंग कैन कॉज प्रॉब्लम, ईटिंग कैन बी अ मिजरी। चाहे आप कितना भी अच्छा खाना किसी को दो, कितना भी स्वादिष्ट खाना किसी को दो, अगर वो बेचारेगा इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है तो यू नो क्या कहेगा वो, इतना अच्छा है लेकिन मैं नहीं खा सकता, सॉरी मैं नहीं खा सकता, दैट इज़ व्हाट हैपन्स। सो खाना जो है उसका स्वाद जो है वो तो भगवान ने तुम्हारे बोला कि मुझे चाहिए, तो ठीक है भगवान बोले लो तुम्हारे जीवा के लिए अरेंज कर दिया, ऐसा तो कोई खाएगा नहीं, जीवा के लिए अरेंज कर दिया स्वाद। अभी स्वाद आने के बाद क्या पचाएगा कौन, भगवान बोले तुम पचाओ, भगवान बनने निकले थे पचाओ, अब तो हम तो हमारे से कुछ होता नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, मैं ही अग्नि के रूप में आ जाता हूँ तुम्हारे पास, स्वाद भी मैंने दिया, अग्नि चाहिए थी कुकिंग के लिए तो वो भी मैंने दे दी, अभी बाहर का कुकिंग हो गया तो अंदर कुकिंग चाहिए, अंदर भी तो कुकिंग होगा, जितना दो घंटा बाहर कुकिंग होगा दो घंटा अंदर भी होता है कुकिंग, तो अंदर अंदर भी पानी चाहिए खाना चाहिए, अंदर जठर अग्नि ऑन होगी स्टोव अंदर गैस चूल्हा अंदर चलेगा तभी वो हजम होगा ना, नहीं तो वो हजम नहीं होगा। तो भगवान कहते हैं कि पाचन की शक्ति भी मैं देता हूँ, तो अर्थात बेटा जीव तुम पूर्ण रूप से मेरे आश्रित हो, पूर्ण रूप से मेरे आश्रित हो, खा भी नहीं सकते पचा भी नहीं सकते उगा भी नहीं सकते देख नहीं सकते, करने का क्या तुम्हारा भगवान बनने का,
हम लोग अपने आप को स्वामी
वही तो कह रहे ना, वही तो कह रहे हैं, तुम्हारे भगवान बनने का फायदा क्या, कुछ कर तो रहते नहीं है सब कुछ मेरे आश्रित हो। लेकिन भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि कौन सा ये हम ये एक चीज का क्यों चर्चा हुआ, वो विमूढ़ा नानु पश्यन्ति था ना, तो भगवान ने उसका सॉल्यूशन दिया ही है कि वो विमूढ़ जो लोग हैं ना उनको ये सारी चीज बताओ कि ये इस माध्यम से तुम भगवान को समझ सकते हो, यू नो दिस इज अनदर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग गॉड। तो अभी अभी भी एक श्लोक बाकी है उसके अंदर, वो भगवान अपना विस्तार कर रहे हैं अलग अलग रूप से, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम आश्रितः। प्रॉपर लिखा है तात्पर्य में, कुछ निकले जाते हैं चबाए जाते हैं चाटे जाते हैं चूसे जाते हैं। अभी 15वां श्लोक बड़ा फेमस है पढ़िए।
मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है, मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ, निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ।
सर्वस्व चाहम, ये शायद आपका मेमोरी वर्ड्स होगा कि मेमोरी वर्ड्स है
ना,
ये मेमोरी वर्ड्स है, इसको कंठस्थ एग्जाम में पूछा जाएगा ये, तो इसको कंठस्थ करना है। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टु मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम, सर्वस्य सबके हृदय में च अहम, मैं हृदय में सन्निविष्ट बैठा हुआ हूँ, सन्निविष्ट सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट, सबके हृदय में मैं हूँ सन्निविष्ट का प्रपद पर स्थित, मत्तः मुझसे स्मृति होती है ज्ञान होता है और अपोहन, ये तीन चीज मुझसे होती है, ये तीन चीज अब भगवान बता रहे थे। वो तुम्हारा पहला क्या बताया, सूर्य, फिर बताया चंद्र, फिर बताया अग्नि, और जठर अग्नि बता दिया, सब बताया, अब बताया तीन और चीज क्या, स्मृति, क्या करोगे भूल गए तो, लोग कितना स्कूल में कॉलेज में इतना पढ़ाई करने के बाद एग्जाम में जाने के बाद सब कुछ रेडी होने के बाद आंसर लिखने ही वाला था और अचानक से ब्लैंक हो गया।
हाँ भगवान ने बोला,
हाँ अभी सोचो क्या क्या करेगा, और नाचेगा कूदेगा क्या क्या करेगा, ब्लैंक हो गया ऑन द स्पॉट, गया तुम्हारा सारा मेहनत जो किया था, यू नो कितना पढ़ा, रात को जग जग के पढ़ा था, सब कुछ किया, सब गया अचानक से, क्यों? विस्मृति हो गई। और किसी कोई व्यक्ति था उसने कुछ पढ़ा नहीं था और अचानक लिखते समय तो
याद आ गया
स्मृति, अचानक से याद आ गया स्मृति, ज्ञानम अपवनम च, ये तीनों चीज भगवान कहते हैं कि देखो तुम भौतिक जीवन निर्वाह करने के लिए, भोग करने के लिए, इंद्रियों में इंद्रियों का भोग करने के लिए तुम्हें स्मृति चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना, भगवान बताते। अभी अभी समझ लो कि आपको पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा आपको अच्छा लगता है, वो आपको कैसे पता चला कि ये अच्छा लगता है आपको? एक बार खाया था कभी, यू नो आई रिमेम्बर, मैं कहीं जब से बड़ा हुआ कई साल तक तो मैंने पिज़्ज़ा क्या होता पता ही नहीं था। एक बार जब मैं छोटा था शायद 8-10 साल का होगा शायद, पता नहीं क्या, एक कोई पिज़्ज़ा लेके आया और मेरे पापा ने मुझे बताया बेटा इसको पिज़्ज़ा बोलते हैं। अच्छा क्या बोलते हैं? पिज़्ज़ा बोलते हैं। अच्छा पिज़्ज़ा ये क्या नाम हुआ? हाँ ये विदेशी आइटम है पिज़्ज़ा। अच्छा तो चलो टेस्ट करके दे। उस समय इतने साल में पता ही नहीं था पिज़्ज़ा क्या होता है क्या? जैसे आप लोग तो पुराने खिलाड़ी हो, आपको तो पता होगा है ना, आपके उम्र में पिज़्ज़ा खाते थे क्या या आप छोटे थे तब?
मैं तो 4-5 साल पहले खाया पिज़्ज़ा। वो हमारी बेटी जब पुणे से आई तो वो पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा कर हम कह चलो खा ही लेते पिज़्ज़ा, और जब वो मंगवाई तो मेरा तो दिमाग खराब, कितने पैसे लगे 600-700 रुपए और सिर्फ 2-3 ऐसा रोटी जैसा, लेकिन
ऐसा रोटी बोले हम बहुत खाते हैं।
लेकिन जब खाया ना तो पहले तो अच्छा नहीं लगा कि क्या बकवास है, कि थोड़ी देर के बाद में जब स्वाद बात कर रहे हैं तो अच्छा
वैरायटी है ना, तो देर से देर तक
तो खाया, एक दो बार और खाया उसके बाद
में। पहले खाया तो बोले मक्की का रोटी खाते तो ज्यादा अच्छा लगता।
मैं पुणे गया था बेटी के ऊपर मैं गुस्सा हो गया, मैं बोला क्या खिलाई तुम्हें जो तुम बकवास इतना पैसे खर्चा की, लेकिन फिर बाद में
अच्छा लगा। तो अभी अगर आपके सामने कोई पिज़्ज़ा का प्लेट लगाएगा तो आपको उस दिन का स्मृति होगा ना कि अच्छा था, ऐसे बुरा तो नहीं था, अच्छा था। तो अभी वो स्मृति जो है ना, ये आपका फेवरेट डिश कब बना, अभी बना है कि नहीं पता नहीं, लेकिन फेवरेट डिश कब बनता है? जब आपको उसका टेस्ट याद रहता है, स्मृति, इज़न्ट इट। अब बच्चों को पूछो, बच्चा वो उसको नींबू दिखाओ, एक बार खाया तो ऐसे करेगा है ना, बच्चे को नींबू खिलाओ, आप छोटे बच्चे को ऐसे करेगा, फिर दूसरी बार उसको नींबू दिखाओगे तो वो क्या करेगा? वो दिखाने से ही मुंह बिगाड़ देगा है ना, नहीं दिखाने से। तो कैसे हुआ ये स्मृति? और अगर भगवान संसार भर की जन्मों जन्मों की जितनी प्रॉब्लम हमने फेस की अभी तक वो सब की विस्मृति भगवान नहीं करा दे तो आप स्टैच्यू बन जाते। आप सोचो कि आपको अनेक अनेक जन्मों में जो जो प्रॉब्लम हुई है वो सारी प्रॉब्लम का एक घंटे के लिए, केवल एक घंटा छोड़ो, आधे घंटे के लिए या एक मिनट के लिए अगर आपको मेमोरी ऑन किए सब जन्मों की, क्या होगा आपका हाल?
ब्लास्ट हो जाएगा
है ना, चक्कर खा के गिर जाओगे, बेहोश हो जाओगे है ना, ये क्या है ये है ना, व्हाट यू विल। सो विस्मृति आवश्यक है, भगवान ने कृपा किया कि आप भूल गए, नहीं तो आपकी हाल जीने लायक नहीं रहती। विस्मृति करवाई आपको पूर्व जन्म की, ये बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। अगर ये विस्मृति नहीं होती तो आप हम जीवन नहीं जी पाते नहीं। और यहाँ तक कि पूर्व जन्म की बात छोड़ो, इस जन्म में भी कहीं कटु अनुभव हुए हैं आपके लाइफ में, अगर आप सोचने बैठोगे तो याद आएगा है ना। आप शांति से बैठते हो, सारी चीज़ों को एक एक करके देखते हो, गिनते हो लाइफ का बैक हिस्ट्री, तो आपको आएगा सब कुछ याद धीरे धीरे करके, लेकिन भगवान ने कृपा करके उसको भुला दिया है, तो आप आपका जो रूटीन लाइफ है वो अच्छे से कर सकते हो, दैट इज द आइडिया। तो भगवान इस तरह से विस्मृति कराते हैं कि मुझे भोग करना चाहता है, तुम भगवान बनना चाहता है, तो तुम भूल जाओ कि तुम मेरे दास हो, तुम भूल जाओ, यू फॉरगेट दैट यू आर माई। अगर भगवान उसको ये भुलाएंगे नहीं कि तू कृष्ण का दास है, तो वो भगवान कैसे बन सकता है? उसको बनने का इच्छा है ना, तो भगवान उसकी इच्छा पूरी करते हैं। आई मीन दिस इज सो नो सीरियस थिंग फॉर अस कि आप चाहते हो भगवान को भूलना और भगवान आपको हेल्प कर रहे हैं,
हेल्प कर रहे हैं,
यू फॉरगेट इट,
ठीक है बन जाओ।
आप चाहते हो माया की चीज़ों को याद करना, जैसे आपको आपने कोई मूवी देखा तो मूवी के बाद आपको अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आ गया, तो स्मृति कराते हैं कि आप फिर से मूवी देखने जाओगे। सेम चीज़ खाने का, देखने का, जो भी चीज़ इंद्रियों के साथ जुड़ी हुई है, वो इंद्रियों का जो संपर्क के माध्यम से जो सुख या दुख अनुभव होता है, वो भगवान आपको स्मृति कराते हैं ताकि आप उसके पीछे लगे रहो। और विस्मृति कराते हैं कि तुम भगवान के दास हो। लेकिन फिर अगर आप चाहते हो कि नहीं, मुझे तो चाहिए आपका सेवक बनना है, भक्त बनना है, तो फिर वो आपको उसका विस्मृति करा सकते हैं, अदर वे, वो पहले वाली जो है उसकी विस्मृति करा सकते हैं, और भगवान का दासत्व का जो स्मृति है वो करा सकते हैं। दैट इज इन हिज हैंड, और भगवान के हाथ में है ये चीज। जैसे श्री प्रभुपाद तात्पर्य में कहते, एक जगह लेक्चर में कहते हैं, प्रभुपाद एक जगह लेक्चर में कहते हैं कि कृष्ण इज सो काइंड, जस्ट लाइक यू हैव सीन द मास्टर टेकिंग अ डॉग फॉर अ वॉक। कृष्ण कितने कृपालु है कि जगह कभी कुत्ता देखा आप, मालिक को, मालिक कुत्ते को लेकर जाता है, और हालांकि वो स्वामी है, बट द डॉग इज अलाउड टू डू वॉट एवर ही लाइक्स। कुत्ते को जो करना है उसको करने दिया जाता है, इधर इट द मास्टर वेट्स फॉर हिम। जो उसका स्वामी होता है वो प्रतीक्षा करता है, टट्टी पास करना कर ले, सुषुमा कर ले, वेट करता है स्वामी। यस यू कैन वॉक, यू कैन रन, यू कैन पास यूरिन स्टूल, वॉट एवर, आई विल वेट। सिमिलरली कृष्ण इज सो काइंड एंड अफेक्शनेट, इज सो काइंड, भगवान इतने दयालु है, दैट वी हैव कम टू एंजॉय दिस मटेरियल वर्ल्ड। कृष्ण से सो कैन गिव यू फैसिलिटी, तुम्हें चाहिए ना धन, चाहिए पैसा, चाहिए ये आपको घर चाहिए, ये पुरुष स्त्री चाहिए, जो तुम्हें चाहिए वो सब मैं तुम्हें देता हूँ। आई गिव यू फैसिलिटी, यू वॉन्ट टू एन्जॉय राइट, सो यू एन्जॉय, आई गिव यू फैसिलिटी, जस्ट लाइक द मास्टर। बट कृष्ण वॉन्ट्स एवरी लिविंग एंटिटी टू बी ओबीडियंट टू हिम, दैट इज कृष्णस एन्जॉयमेंट। भगवान चाहते हैं कि तुम मेरी बात सुनो बस, यू फॉलो वॉट आई से, दैट इज वॉट कृष्ण सेज। लेकिन आप देखो भगवान की कृपालुता, देखो कृष्णा इज सो काइंड, ही इज आस्किंग एवरी लिविंग एंटिटी, स्पेशल ह्यूमन बींग, अभी तो स्वामी है फिर भी क्या बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मुझे थोड़ा सा पत्र दे दो, मुझे फूल दे दो, पानी दे दो, थोड़ा सा फल दे दो, बस मांग रहे हैं, ही इज आस्किंग। मांगना कोई अच्छी बात नहीं है, स्वामी है वो तो, ही कैन ऑर्डर, बस मांगना तो सेवक का काम है, स्वामी का काम थोड़ी है। लेकिन भगवान मांग रहे, आस्किंग, थोड़ा सा पत्र दे दो, थोड़ा जल दे दो, ऐसे इज आस्किंग, इज सो काइंड। अरे तुम भौतिक सुख भोगने आया, ठीक है तुम भोगो, तुम्हें बहुत इच्छा है, मैं तुम्हें सुविधा देता हूँ, लेकिन थोड़ा मेरी बात सुन लो, जस्ट लिसन व्हाट आई एम सेइंग। भगवान इस तरह से कह रहे, जस्ट लिसन, आई वॉन्ट टू हेल्प यू, लिसन टू मी, स्टिल इज एंकरिंग फॉर लिटिल फॉर भगवान, दिस इज द पोजिशन। भगवान कहते, इफ यू काइंडली गिव मी इवन लिटिल वाटर, इवन लिटिल फ्लावर, लिटिल फ्रूट विच फेट वर्ड्स मी एंड लव, आई विल इट। कृष्ण इज सो काइंड, प्रभुपाद कहते हैं इसलिए वो हमेशा हमारे साथ है। भगवान हमारे मंदिर में आते हैं इन सब चीजों को स्वीकार करके हमें भगवत धाम वापिस भेजने के लिए। जो भी तरीका भगवान को जो भी पॉसिबल तरीका है सब यूज करते हैं भगवान। आई मीन दिस इज ही हैज नथिंग टू डू विद अस। हमारे जैसे तुच्छ जीव के लिए उनका कोई लेना देना, बट ही इज टेकिंग केयर ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। एक एक व्यक्ति की भावनाओं का कदर करते हैं। इवन सिंगल जस्ट लाइक देर मे बी मैनी चिल्ड्रन ऑफ अ मदर, बट मदर इज इक्वली फेवरेबल टू ऑल ऑफ हर चिल्ड्रन। यू ऑल्सो मैनिफेस्ट हिमसेल्फ एज अ डिवोटी। चैतन्य महाप्रभु पर्सनली केम एंड ही सेड सर्वधर्मान परित्यज्य, व्हाई आर यू सफरिंग, गिव अप ऑल दिस। तुम जो तुम कार्य कर रहे हो उससे तो केवल कष्ट ही कष्ट बढ़ेगा, तुम्हारा बंधन बढ़ेगा। यू कैन नॉट बी फ्री टू डू एनीथिंग, दैट इज नॉट पॉसिबल। तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई रोक टोक नहीं चाहिए, तुम अपना अपना इच्छा से काम कर दो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। अपने मनमानी ढंग से तुम करना चाहते हो, ये संभव नहीं है, ये हो नहीं पाएगा। तुम करोगे तो भी नहीं हो पाएगा। दैट इज व्हाट चैतन्य महाप्रभु सेज। प्रभुपाद सेज, डोंट बॉदर योर वे ऑफ थिंकिंग। यस्टरडे अ बॉय एंड गर्ल केम, द बॉय इज अ पोएट एंड आई आस्क्ड हिम, व्हाट पोएट्री डू यू राइट। एक कोई लड़का प्रभुपाद को मिलने आया था और प्रभुपाद ने पूछा उनको, एक लड़का लड़की दोनों थे, तो प्रभुपाद ने लड़के पूछा क्या हो तुम, हम क्या करते हो, तो बोले मैं कवि हूँ। बोले किस प्रकार की कविता लिखते हो। देन व्हाट ही आंसर्ड, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर, ही सेड नो सब्जेक्ट मैटर। देन प्रभुपाद सेड इज मैड, पागल, पिशाची पाए रे जरा मत छन्न हो, माया ग्रस्त जीव है यही दशा उपजाए। पिशाची घोष्ट, व्हेन अ पर्सन इज हॉन्टेड बाय अ घोष्ट ही स्पीक ऑल नॉनसेंस। जो कोई व्यक्ति भूत लग गया है तो कुछ भी बोल सकता है वो। यू नो प्रभुपाद कंपेयर्ड दैट रास्कल लाइक दैट, यू नो, जैसे माया, सो मायाग्रस्त जीवे होए से दशा उपजाए। सो और एक बात ध्यान में रखनी चाहिए हम भक्तों को कि भगवान बुलाते हैं जैसे कोई डायरेक्टर बुलाता है, जो एक्टर कभी मुझे वो जो हॉट मूवी अभी जो बॉक्स ऑफिस पर, क्या नाम है वो, पद्मावत, बहुत बड़ी मूवी है, ऐसा उसने पूरे वर्ल्ड में धमाका मचा दिया है। आई मीन भारत में तो सही, सब जगह धमाका मचा दिया है, यू नो। तो वो पद्मावत मूवी का कोई न्यूज़ में कोई एक आर्टिकल था उसके रिलेटेड कुछ, तो उसमें ऐसा लिखा गया था कि जो एक्टर है उसको साइकेट्रिक के वो मनोचिकित्सक के पास जाना पड़ा था। उस जो उसका रोल था, कैरेक्टर था, उससे बाहर आने के लिए वो जो वो कैरेक्टर जो रोल प्ले कर रहा था उससे कैरेक्टर से बाहर आने के लिए उसको डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ी, है ना। तो ये विस्मृति कराया था भगवान ने। प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं इस तरह का कि डायरेक्टर जो होता है वो एक्टर को सिखाता है उस रोल को आत्मसात करने को, भुलाने के लिए। लेकिन वो इतना भूल जाता है, बहुत ही विगत में लोग इतना भूल जाता है कि बाहर आना पसंद ही नहीं उसको, वो उसके अंदर ही पड़ा रहता है। बट दैट मर्सी इज गिवन बाय लॉर्ड, वी हैव फॉरगॉटन आवर रिलेशनशिप विद द लॉर्ड, वी वांटेड टू एंजॉय मटेरियल वर्ल्ड, सो यू फॉरगेट कंप्लीटली द टाइम स्पिरिट सोल एंड नॉट दिस बॉडी। हम पूर्ण रूप से भूल जाते हैं। Do not become entangled in this material world. Therefore, his instruction is sarvadharman prityajya. So, और जो याद करना चाहते हैं उसको भगवान आगे एक श्लोक में बताया था ना, ददामि बुद्धि योगम तम। बुद्धि कौन देता है, भगवान ही तो देते हैं। आप जब लेक्चर देते हो तो क्या आप खुद थोड़ी लेक्चर देते हो, आप प्रवचन देते हो। कभी आप में से कोई भक्त लोग प्रवचन देते हैं या प्रचार करते हैं कभी किसी को, तो आप थोड़ी बोलते हो, आपको स्मृति कराते हैं भगवान। कृष्णा आपको स्मृति कराते हैं। सो श्रीमद भागवत में भी सेड समवेयर कि जो दानव होते हैं, असुर जो होते हैं और भक्त है, उनका स्मृति विस्मृति भगवान कराते, जन्म जन्म तक वो भूल ही जाता है भगवान को, और भगवान के भक्त होते हैं वो कभी भूलते ही नहीं, कहीं भी जाओ उसको कहीं भी भेज दो. Then Prabhupada says in another sloka of fourth canto, इसमें कहते हैं कि जीवात्मा चाहे वो कितना भी तुच्छ हो, मच्छर हो, चींटी हो या स्टूल का कीड़ा हो, तो चाहे कितना भी तुच्छ हो जीवात्मा, उसकी इच्छाओं को भगवान नोट करते हैं. जो भी इच्छा करते हैं उसको नोट की जाती है, भगवान पर्सनली उसको नोट करते हैं, उसकी सारी भावनाओं की कदर की जाती है भगवान के द्वारा, और उसकी इच्छाओं की फुलफिल करने के लिए उसको अवसर प्रदान किया जाता है. ओके, यू वांटेड टू डू दिस, आई गिव यू अपॉर्चुनिटी, भगवान इस तरह से उसको अवसर देते हैं. देन प्रभुपाद कहते हैं, अरे भाई नॉन डिवोटी की इच्छा है भगवान पूरी करते हैं, तो ये डिवोटी की इच्छा पूरी नहीं कर सकते. जब नॉन डिवोटी की इच्छा पूरी हो जाए तो भक्तों की इच्छा क्यों पूरी नहीं करेंगे, बट हम इच्छा करते ही नहीं है. हम इच्छा करें तो पूरी करेंगे ना भगवान, इच्छा करेंगे आप तब पूरी करेंगे ना भगवान, आप इच्छा करो थोड़ा. नहीं प्रभु जी, इच्छा तो है लेकिन प्रबल इच्छा नहीं है, प्रबल इच्छा नहीं है हमारी इच्छा. आपकी इच्छा प्रबल है या नहीं वो कैसे पता पड़ेगा, आपके एक्टिविटीज से है ना. आपकी प्रबल इच्छा है वो आप कैसे डिस्प्ले कर सकते हो, आपके कार्यों के माध्यम से. अगर आपके कार्य प्रबल इच्छा दिखा रहा है तो कौन ऐसा है भगवान यू नो आके आपकी इच्छा पूरी नहीं करेंगे. प्रभुपाद कहते कि भक्तों की इच्छा पूरी करते, तो भक्तों की क्यों नहीं करेंगे. Whenever one fully surrenders unto the Supreme Lord, one finds that He is sitting within one's heart. He can give us direction as how to get out of danger or how to approach Him in devotional service. A pure devotee simply wants to engage in the service of the Lord without material desire. And if he wants this within the core of his heart, where the Lord is situated, and if he is without ulterior motive, why should Lord not understand that? जब भगवान देखते हैं जो उसके हृदय में बैठे हैं कि उसके हृदय में कोई दूषित भावना नहीं है, उसकी भावना स्वच्छ है, वो भगवान की सेवा करना चाहता है और कोई उद्देश्य नहीं है, तो वो उसकी इच्छा पूरी क्यों नहीं होगी. कई बार भक्त आके कहते हैं प्रभु जी मेरी आध्यात्मिक इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तब उनको फिर कहते हैं आर ना करी हमने आशा, आर ना करी हमने आशा. गुरुमुख पद्म वाक्य गुरु ने जो बोला उसका पालन करो, तुम्हारी इच्छा पूरी क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि तुम गुरु के बताए गए चीज से अलग इच्छा रखते हो. तुम चाहते हो और सारी चीजों को भी मिलना, यू नो और सब चीज भी चाहते हो, इससे तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो रही है. लेकिन गुरु चरण रहती ऐसे उत्तम गति, गुरु महाराज का जो चरण है वही आपकी उत्तम गति है, और उनके वचन का पालन करना यही एकमात्र उद्देश्य है, तो ये प्रसाद है पूरे सर्वाशा, जिनकी कृपा से आपकी सारी आध्यात्मिक इच्छा पूरी हो सकती है. क्यों नहीं, इनको उनको ऐसा कोई द्वेष नहीं है ना, भक्त बन गया तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी, ऐसा कोई द्वेष नहीं है भगवान को हमारी हमारे साथ, है ना. सो बट वी हैव टू मेक इट, यू नो केवल सोचने से कुछ नहीं होता, वी हैव टू डू इट. प्रभुपाद सेज यू आर सिंसियर ड्यूटी रेंडर सर्विस टू द लॉर्ड or to the Artha Vigra, the form of the Lord. All activities prove successful because the Lord is present within his heart and he understands his sincerity. तो सारे सफल होना कोई भक्तों के लिए सफल होना कोई बड़ी बात नहीं है. हाँ, अगर वो स्वच्छ है, उसका मन स्वच्छ है, तो सफल होगा ही, क्यों नहीं होगा, इसमें सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है. सो हम भक्तों को जो प्रचार करने वाले भक्त हैं उन लोग को भी ये सोचना चाहिए कि भगवान ही आपको स्मृति विस्मृति ज्ञान वगैरह सब कराते हैं, उनकी कृपा से ही यह सब कुछ होता है। इसलिए पर्सनली मैं जब भी लेक्चर देता हूँ तो लेक्चर शुरू करने से पहले ये बाय डिफॉल्ट सिस्टम हो गया है प्रार्थना करने का, तो एक बार प्रार्थना मंगलाचरण जो भी होता है अगर आप कर लिया यू नो प्रेयर छोटी अंदर हृदय से, फिर निश्चिंत होकर आप लेक्चर दे सकते हो, क्योंकि फिर बोलेंगे भूलेंगे याद करेंगे किसके किसके सिर पे है, भगवान के सिर पे है ना। हमारा काम क्या है, तोते की तरह बोलना, जो भगवान बुलाएंगे वो बोलेंगे। दिस शुड बी द वे ऑफ अप्रोच, डिवोटीज जो है प्रयास करते हैं प्रचार करने के लिए, लेकिन आधार स्मृति विस्मृति का किस पर रखते हैं। लेकिन जो लोग मेरे पास आना चाहते हैं तो फिर वेदांतकृत वेद विदे वचाम वेदे सर्व अहमेव वेद, वेदों में जानने वाली वस्तु मैं ही हूँ, वेद पढ़ने का फायदा क्या अगर भगवान को नहीं जाने तो। वेद पाठी ब्राह्मण होगा, पढ़ता रहेगा लेकिन भगवान को नहीं जानता तो क्या फायदा क्या, या फिर जो भगवान को जान लिया उसको वेद पढ़ने की क्या आवश्यकता है ना ददर वे, क्योंकि जानने वाली चीज भगवान कहते मैं हूँ तो फिर वेद क्यों पढ़ेगा। अरे प्रभु आप वेद का अपमान करो ना, भगवान बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कि वेद में सबसे जो जानने वाली चीज है वो तो मैं हूँ, और वेदांत खरीद मैं ही वेद व्यास बन के आता हूँ, वेद की रचना करता हूँ। अलग अलग वेद व्यास होते, इस बार जो वेद व्यास आए वो भगवान का अवतार है, भगवान ही वेद व्यास बन के, अभी नेक्स्ट टाइम जो वेद व्यास बनेगा वो अश्वत्थामा बनेगा, नेक्स्ट टाइम व्यास का जो पोजीशन है वो अश्वत्थामा लेगा, इस बार का जो व्यास है वो भगवान स्वयं अवतार लेके आए। तो वेदांतकृत वेद मैंने बनाए, वेद वेदे से स्वयं वेद वेदांतकृत वेद विदेह, वेद को कोई समझ ही नहीं सकता, वेद इतना गुह्य है कि कोई समझ नहीं सकता, तो पूर्ण रूप से कौन जानता है, बृहस्पति ना, पूर्ण रूप से एक ही व्यक्ति जानता है कौन, मैं। भगवान कहते वेद विदेह वचाहम, तभी तो कह सकते हैं ना कि वेद मैं ही हूँ, जो पूर्ण रूप से वेदों को जानने वाला व्यक्ति है वो कह रहा है कि वेदों में किसको जानने का है,
मुझे
जानने का। तो इसलिए तुम वेदों का शरण लेना चाहते हो, नो प्रॉब्लम, प्रभुपाद सेज द वेदास गिव अस डायरेक्शन बाय विच टू अंडरस्टैंड कृष्णा इन द प्रोसेस ऑफ रियलाइजेशन, द अल्टीमेट गोल इज द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड, बाय अंडरस्टैंडिंग द वैदिक लिटरेचर वन कैन अंडरस्टैंड हिज रिलेशनशिप विद द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड, बाय परफॉर्मिंग द डिफरेंट प्रोसेस वन कैन अप्रोच हिम, एट द एंड वन कैन अटेन द सुप्रीम गोल which is no other than the Supreme Personality of Godhead. तो प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि अभी आने वाले जो चार श्लोक है उसमें संबंध अभिधेय और प्रयोजन का पांच श्लोक में भगवान वर्णन करते हैं। वी विश टू फिनिश इट टूडे itself. तो 16, 17, 18 जो है उसमें संबंध ज्ञान बताया गया है, फिर 19वें श्लोक में अभिधेय है और 20वें श्लोक में प्रयोजन चीज है। संबंध का अर्थ है भगवान से संबंध स्थापित करना, अभिधेय का अर्थ है उन भगवान के पास पहुंचने का जो विधि है वो अभिधेय है, और वो भगवान को प्राप्त करने के बाद परिणाम क्या आएगा वो है प्रयोजन। ये तीन चीज अभी आने वाले श्लोकों में बताई गई है। तो अभी पढ़िए 16वां श्लोक।
जीव दो प्रकार के है, चुत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव चुत क्षण होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत क्षण कहलाता है।
तो पहला पैराग्राफ पढ़ी तात्पर्यगा।
जैसा कि पहले बताया जा चुका है, भगवान ने अपने व्यासदेव अवतार में ब्रह्म सूत्र का संकलन किया। भगवान ने यहाँ पर वेदांत सूत्र की विषय वस्तु का सार संक्षेप दिया है। उनका कहना है कि जीव जिनकी संख्या अनंत है दो श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं, चुत क्षर तथा अक्षर। जीव भगवान के सनातन पृथ्वीकृत अंश विभिन्नाश है, जब उनका सत्संग भौतिक जगत से होता है तो वे जीवभूत कहलाते हैं। यहाँ पर क्षर सर्वाणी भूतानी पद प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है कि जीव चुत है। लेकिन जो जीव परमेश्वर से एकत्व स्थापित कर लेते हैं वे अच्युत कहलाते हैं। एकत्व का अर्थ यह नहीं है कि उनकी अपनी निजी सत्ता नहीं है, बल्कि यह कि दोनों में भिन्नता नहीं है। वे सब सृजन के प्रयोजन को मानते हैं। निसंदेह आध्यात्मिक जगत में सृजन जैसी कोई वस्तु नहीं है, लेकिन क्योंकि जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, भगवान समस्त उद्भव के स्रोत है, अतः यहाँ पर इस विचारधारा की व्याख्या दी गई है।
या तो दो प्रकार के क्षर और अक्षर, बद्ध और मुक्त, दो प्रकार के जीव है। इस धरा भौतिक ब्रह्मांड में जो दिखा रहे वह है बद्ध आत्मा है, फॉलिबल। हमारा भूतवा भूतवा प्रलय थे इस संसार में, हमारा क्या होता है आवागमन, पुनरावर्तन अर्जुन हमारा फॉलिबल है। हम इसलिए हमारा पतन होता है, इसलिए हमें क्षर कहा गया है। और अक्षर जो है, अक्षर शब्द का उपयोग हुआ है, अक्षर श्रवण भूतानी कुटस्थ, कुटस्थ अक्षर उच्चते, ऐसा है ना, कुटस्थ अक्षर उच्चते, कुटस्थ का अर्थ है स्थिर, स्थित अक्षर, उनका पतन नहीं होता, कुटस्थ अचड़। और जैसे अन्नकूट होता है, कूट का पर्वत, पर्वत जो होता है, कूट का अर्थ पर्वत है ना, चित अन्नकूट है, फिर और कौन सा कूट होता है, बहुत सारे कूट, कूट का अर्थ पर्वत, कूट मीन्स पर्वत, मीन्स जो चलायमान नहीं है, जो अचल है, उसको स्थिर है, उसको कूट कहते हैं। तो इसलिए कूटस्थ अक्षर उच्चते, उसका पतन नहीं होता ऐसे जीवात्माओं का। वामिमो पुरुष लोके सरक्ष चाक्षर एवच सरक्ष सर्वाणि भूतानि, कुटस्थो अक्षर उच्चते। भौतिक जगत में सर्वाणी अक्षर है और आध्यात्मिक जगत में सारे अक्षर है। ये लोग कहते हैं ना अक्षर अक्षर प्राप्ति, अक्षर की प्राप्ति, ऐसे बोलते हैं ना लोग, अक्षर की प्राप्ति। तो ये मुक्तावस्था है, अक्षर में जिसका पतन नहीं होता उसका मुक्तावस्था है, नित्य मुक्त आत्मा।
शायद उसी से अक्षर धाम नाम आया
होगा। हाँ वही बता रहा मैं, उसी नाम को बता रहा हूँ, अक्षर कुटस्थ अक्षर उच्चते। तो फिर भगवान आगे कहते हैं कि यहाँ पर जो एक जो वननेस की बात हुई है वो हिंदी में इसको क्लियर बताया नहीं था हिंदी में, लेकिन ये एकत्व है ना, एकत्व वहाँ पर भगवान और जीवों का जो साम्यता है वह उनकी इच्छा है, भगवान की इच्छा है जीव भगवान की सेवा करे और जीव का इच्छा है भगवान की सेवा करे। ये दोनों का एक कॉमन डिजायर है, सो दे आर स्टेइंग देयर, उनका पतन नहीं होता, अक्षर उनकी इच्छा सेम है। या फिर भगवान ने भगवत इसी अध्याय में चौथे पांचवें श्लोक में जो बताया था अश्वत्थ वृक्ष को लेकर के, कि हे अर्जुन वैराग्य से इस भौतिक सृष्टि से तुम वैराग्य उत्पन्न करो, कट डाउन दिस, तो वैराग्य उत्पन्न करने का भगवान ने बोला था। और जो भी स्वतंत्र इच्छा है भोग करने की उसका त्याग करो, तभी तुम इस रूप से बाहर आ सकते हो और शरणागत हो जाओ, ऐसा भगवान बताया थे पहले। तो वो इच्छा भगवान बताया सेम अक्षर उसको फॉलो करता है, इसलिए दोनों का समानता है। लेकिन इसके अलावा ये दो अक्षर और अक्षर के अलावा एक और पुरुष भी है, पढ़िए।
इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन करता है।
उत्तम पुरुषस्त्वन्य, उत्तम पुरुष ये दोनों से ऊपर है। यहाँ पर बहुत ध्यान रखना चाहिए कि भगवान को अक्षर नहीं कहा गया है, भगवान अक्षर से भी ऊपर है। और ज़्यादातर लोग इसमें प्रॉब्लम करते हैं कि भगवान अक्षर है या फिर भगवान मुक्त है, लेकिन मुक्त और बद्ध ये दोनों से भी ऊपर है। उत्तम पुरुष एक पुरुष है, वो भी पुरुष है, निराकार नहीं है। उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मा, उसका नाम परमात्मा है। परमात्मा परमात्मा तो उदार था। यो लोकत्रय, तीन लोक में लोकत्रय, तीनों विभागों में लोकत्रय। लोक का अर्थ वेद भी होता है, लोके वेद, सारे वेदों में ये बताया गया है। लोकत्रय माविष्य विभर्त अव्यय ईश्वर, तात्पर्य में प्रपद क्या लिखते हैं उनका प्रपद का जो स्वाभाविक रूप से जो प्रपद स्वतः स्वतः कठोपनिषद का जो बताते हैं वो कौन सा है, अत्यंत सुंदर ढंग से व्यक्त का है। वहाँ कहा गया है कि असंख्य जीवों के नियंता, जिनमें से कुछ बद्ध है कुछ मुक्त, एक परम पुरुष है जो परमात्मा। उपनिषद का श्लोक इस प्रकार के, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम, बद्ध तथा मुक्त दोनों प्रकार के जीवों में से एक परम पुरुष भगवान होता है जो उन सब का पालन करता है और उन्हें उनके कर्मों के अनुसार भोग की सुविधा प्रदान करता है। सो ज्ञानी और योगी जो है वो इस उत्तम पुरुष की उपासना करते हैं, उनके पास वो ब्रह्म का वाला ब्रह्मा वाली चीज नहीं, आगे वाले में जो था उसमें परमात्मा की बात नहीं थी, लेकिन यहाँ पर ज्ञानी और योगी दोनों की बात हुई है। लेकिन अभी आगे भगवान कहते हैं इसके ऊपर एक चीज, ब्रह्मा का हो गया, परमात्मा का अभी भगवान का अंतिम स्टेज। विश्वनाथ चक्र ठाकुर यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर जो तू शब्द का उपयोग हुआ है, उत्तम पुरुषस्त्वन्य तू अन्य, तो ये त्वन्य तू अन्य का अर्थ होता है कि वो सब सभी जीवात्माओं के सुप्रीम है, सबके सबसे ऊपर है तू पुरुष। नेक्स्ट श्लोक में भगवान बताते हैं, पढ़िए।
क्योंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ।
परम पुरुष क्या, पुरुषोत्तम के रूप में विख्यात हूँ। आई नो वो ट्रांसलेशन ऐसा लिखा है, लेकिन वो पुरुषोत्तम जैसे किसी चीज से विख्यात होता है वही बताना पड़ेगा ना कि किस नाम से विख्यात हूँ। पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ क्योंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और मैं श्रेष्ठ हूँ। अभी जितने भी क्षर और अक्षर है और परमात्मा से भी श्रेष्ठ, आई एम द बेस्ट भगवान कहते हैं। इसलिए मुझे क्यों, मुझे श्रेष्ठ क्यों कहा गया है, आई एम द गॉड, परमात्मा मेरा अंश है, अंशा अवतार है। भगवान कहते हैं ये तो चांस कला अपन से कृष्णस्तु भगवान से, हम जितने अवतार ले उसमें भी कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है। अतएव जगत में और वेदों में लोकेस्मिन प्रथित लोके वेदे च, अतः अतोस्मि लोके वेदे, लोकों में और वेदों में मुझे पुरुषोत्तम के नाम से लोग जानते हैं, इज फेमस एज पुरुषोत्तम। सो
तो ये तीन श्लोक संबंध बताते कैसे समझेंगे?
संबंध स्थापित करने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि भगवान कौन है, मैं कौन हूं और भगवान कौन है। तो यहाँ पर हम लोग क्षर जीवात्मा है, क्षर सर्व सर्वाणी भूतानी, हमारा स्थान ये है। और भगवान का स्थान क्या है, भगवान के स्थान के विषय में भगवान ने क्या बताया, दो श्लोक बताए पहले में कि उत्तम पुरुष उन दोनों से पर मैं हूँ, एक स्थान ये बताया। और आगे फिर भगवान ने क्या कहा कि दोनों से ऊपर सर्वश्रेष्ठ मैं हूँ और मुझे पुरुषोत्तम बोला गया है। तो जब आप when you know who you are and when you know who Krishna is, then you can make relationship. तभी संबंध स्थापित हो सकता है. संबंध केवल तभी हो सकता है जब आप एक दूसरे को पहचानते हो, अन्यथा नहीं हो सकता. तो दिस इज संबंध. अभी 18वां श्लोक हमने पढ़ा, लास्ट वाला, जिसमें तो पुरुषोत्तम श्लोक का अर्थ ये भी होता है, शब्द का अर्थ होता है कि जो 64 कला एक दिन में सीखे थे, आई मीन 3 महीने में भगवान सीखे थे, एक ही महीने में 64 कला, 64 कलाओं के जानकार है उसको पुरुषोत्तम कहते हैं. और पुरुषोत्तम इज पुरुषों में उत्तम, इस वो पुरुष है, निराकार नहीं है. और जगन्नाथ भगवान का भी एक नाम है पुरुषोत्तम, और उसके नाम से उनका पुरी का नाम हो गया पुरुषोत्तम क्षेत्र. प्रभुपाद स्पष्ट रूप से कहते हैं यह सोचना गलत है कि भगवान तथा जीव समान स्तर पर है या सब प्रकार से एक समान है. इनके व्यक्तित्व में सदैव श्रेष्ठता तथा निम्नता बनी रहती है. उत्तम शब्द अत्यंत सार्थक है. भगवान से बढ़कर और कोई नहीं है. सो अभी 19वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि किस तरह से आप उनको प्राप्त कर सकते हो, प्रसन्न कर सकते हो. पढ़िए.
जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है. अतः वह बड़ पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है.
ये प्रोसेस है. तो मुझे जान लेता है पुरुषोत्तम के रूप में, असम्मूढ़ो, कोई शंका नहीं रहती उसके पीछे, तो क्या होता है, सर्वविद, सब कुछ जान जाता है उसको. फिर एमटेक करने के लिए या फिर एमबीए करने के लिए या कोई बड़ी डिग्री लेने, पीएचडी वगैरह, उसकी आवश्यकता नहीं है सब. या फिर वहाँ पर बनारस में जाके वेदों को पढ़ना, फिर वो शास्त्र पढ़ो, ये शास्त्र पढ़ो, ये सब की आवश्यकता नहीं है. सर्वविद, जो मुझे जानता है वो सब कुछ जान जाता है. यह सर्वविद भजती माम, क्या करता है बाद में, भजती, मेरा सेवा करता है वो, एंगेजेस इन डिवोशनल सर्विस. सर्व भाव है ना, सभी प्रकार से. तो ये उसका फल है भक्ति करना, वो भक्ति में लग जाता है. क्या लिखा है प्रभुपाद ने तात्पर्य में,
जीव था भगवान की.
वी डोंट रीड द होल, द टाइम इज गोइंग फास्ट. जबकि पूर्ण समय का उपयोग भगवान की भक्ति, संपूर्ण भगवद गीता में पक पक पर इस तथ्य पर बल दिया गया है. फिर भी भगवद गीता के ऐसे अनेक कट्टर भाष्यकार है जो परमेश्वर जीव को एक ही मानते हैं. वो भक्ति करने लगता है. प्रॉपर राइट समवेयर. समय का उपयोग नहीं किए बिना सीधे ही कृष्ण भावना में लग जाता है, अर्थात भगवान की भक्ति करने लगता है. हाँ, भजती शब्द वो पढ़िए.
भजती शब्द अत्यंत सार्थक है. कई स्थानों पर भजती का संबंध भगवान की सेवा के अर्थ में व्यक्त हुआ है. यदि कोई व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावना में रत है, अर्थात भगवान की भक्ति करता है, यह समझना चाहिए कि उनके सारा वैदिक ज्ञान समझ लिया है. वैष्णव परंपरा में यह कहा जाता है कि यदि कोई कृष्ण भक्ति में लगा रहता है तो उसे भगवान को जानने के लिए किसी अन्य आध्यात्मिक विधि की आवश्यकता नहीं रहती. भगवान की भक्ति करने के कारण वह पहले से लक्ष्य तक पहुंचा रहता है. वह ज्ञान की समस्त प्रारंभिक विधियों को पार कर चुका होता है. लेकिन यदि कोई लाखों जन्मों तक चिंतन करने पर भी इस लक्ष्य पर नहीं पहुँच पाता कि श्री कृष्ण ही भगवान है और उनकी ही शरण ग्रहण करनी चाहिए, तो उनका अनेक जन्मों का चिंतन व्यर्थ जाता है.
अर्थात भक्ति मार्ग में वो प्रवृत्त होता है, ये उसका अभिधेय होता है. और लास्ट में है प्रयोजन, अंत वाला, वो पढ़िए.
यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है. जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे।
तो अभिधेय में जब वो लगता है प्रोसेस में तो सब कुछ जान लेता है, ही नोज एवरीथिंग सर्वविद। दूसरे शब्दों में जो भगवान को नहीं जानता वो क्या जानता है, वो कुछ नहीं जानता। जो भगवान को नहीं जानता वो कुछ नहीं जानता, और जो भगवान को जानता है वो सब कुछ जानता है। इसलिए भगवान को जान लेना ही आवश्यक है और बाकी सारी चीज कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, अपने आप वो भक्ति में लग जाएगा भगवान को जान लेने से। उसको कोई बड़ा होशियार बनने की आवश्यकता है, गोपियाँ कहाँ कोई थोड़ी कोई डिग्री वगैरह लेके नहीं गई थी कभी, कभी देखा आपने ऐसा? नाग पत्नियाँ थी, उन्होंने कौन से कोर्सेस किए थे? समुद्र में रहते, नदी में रहती थी नाग पत्नियाँ, काली नाग की पत्नियाँ, उनको कहाँ कोई एजुकेशन मिला था? तो वो भी तो स्तुति कर रहे थे, है ना। गरीब ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु का भगवद्गीता नहीं जानता था, पढ़ना नहीं आता था उसको, लेकिन उसके हृदय में प्रेम जो था भगवान को जानता था वो, कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है। तो उसके हृदय में उसके आँखों में से पानी बह रहा था, क्यों बह रहा था? सर्वविद, सब जानता था वो, भगवद्गीता का श्लोक नहीं पढ़ सकता था, संस्कृत नहीं आता था, लेकिन उसका भगवद्गीता का जो मूल भाव है वो तो पूरा आता था उसको, वो पूरा समझता था वो। इसलिए अगर कोई भक्त ये कहता है कि प्रभु मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ इसलिए मुझे ये सब नहीं आएगा, नहीं आता, तो भगवान कहाँ ऐसा बोलते, दादा में बुद्धि योगम के विषय में कंडीशन अप्लाई है, तुम्हें इतना डिग्री लेना पड़ेगा, तुमने इंग्लिश आना चाहिए, ये तुम्हें पढ़े होने होते हैं। कई बार हम कुछ भक्त हमें कहते हैं प्रभु जी आपको तो इंग्लिश आता है इसलिए आप तो बहुत सारा ज्ञान ले सकते हो, हम बेचारे को इंग्लिश नहीं आता तो हमें तो दूर रहना पड़ता है। भाई इंग्लिश सीखने की क्या आवश्यकता है इसमें, है ना? ऐसा किसने बोल दिया कि इंग्लिश सीखोगे तभी आप भगवान को समझ सकते हो? ऐसा कहीं नहीं लिखा। अगर आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, सेवा की भावना है, तो अपने आप सारी बात अपने आप प्रकट हो जाएगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, इसके लिए प्रेम है, प्रेम समझना, प्रेम को अनुकूल करना। गौरकृष्णदास बाबा जी महाराज को क्या आता था? वो तो अपना नाम को कैसे लिखना वो नहीं लिख आता। ऐसे उनको बोलेंगे आपका नाम लिखो ना ऐसे पेपर में, तो ऐसे वो कैसे लिखते हैं नाम ऐसे था, उनको नहीं आता था। ऐसे ग लिखने का होता है, ऐसे गौरकृष्ण का ग, फिर क्या एक रेख होती है, दो मात्रा होती है, एक मात्रा होती है, कैसे लिखने का नहीं आता था उनको। गौर किशोरदास बाबा जी नहीं आता था उनको लिखना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती के गुरु थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया थे, भागवतम पूरा कंठस्थ था, चैतन्य चैतन्य पूरा कंठस्थ था, एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी पूरा जानते थे, उसका भी एक्सपर्ट थे, और ये सारी विद्याओं को जानते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती। और शास्त्र का किसी भी कोने से कोई भी श्लोक आप बोलो तो वो मुखस्थ था उनको, और उनके जो गुरु थे उनको नाम स्पेल करना नहीं आता था। और जब वो गए कि महाराज मुझे बाबा जी मुझे दीक्षा दीजिए, तो भक्ति वो बाबा जी बोले अरे भाई तुम कहाँ विमला प्रसाद सरस्वती, तुम इतने पढ़े लिखे नौजवान और मैं तो मेरा नाम भी लिखना नहीं जानता, मैं कैसे तुम्हारा गुरु बन सकता हूँ, मैं कैसे बनूंगा तुम्हारा गुरु। सो द आइडिया इज लव, लव इज इम्पोर्टेंट फॉर कृष्णा। इसका अर्थ ये नहीं होता कि आप शास्त्र को पढ़ना नहीं, ये नहीं है इसका अर्थ। शास्त्र को तो पढ़ना ही है, वो पढ़ रहा था, वो जो ब्राह्मण था वो पढ़ रहा था,
प्रेम से पढ़ना है ना,
हाँ श्रद्धा से पढ़ना है, भक्ति से पढ़ना है, तो अपने आप सब चार सारी चीज अपने आप प्रकट होगी। उसको तो नहीं आता था फिर भी पढ़ रहा था, और हमको तो सब आता है फिर भी नहीं पढ़ रहे, तो इसलिए हमें इसको पढ़ना चाहिए। जब प्रेम होगा हृदय में तो अपने आप सब ज्ञान अपने आप प्रकट होने लगेंगे। सो अंत में भगवान प्रयोजन में क्या कहा कि द मोस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा होता वैदिक स्क्रिप्चर्स, पूरे वेदों का जो अंतिम रहस्य है, हे अनर अनक हे तो निष्पाप अर्जुन, मैंने तुम्हें बता दिया अभी, हुएवर अंडरस्टैंड दिस विल बिकम वाइज एंड सब प्रकार की सिद्धि को प्राप्त करता है। तो तात्पर्य प्रभात क्या कहते हैं, वर्ड अनर्गा शब्द, अनर्गा शब्द का
जिस अनर्ग शब्द से अर्जुन को संबोधित किया जा गया है वह सार्थक है। अनर्ग अर्थात है निष्पाप का, अर्थात है निष्पाप। निष्पाप का अर्थ है कि जब तक मनुष्य समस्त पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। उसे समस्त कलश समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है तभी वह समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है।
नेक्स्ट,
शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर पूर्ण कृष्ण भावना मृत में भक्ति करते हुए कुछ बातों को बिल्कुल ही दूर करना कर देना चाहिए।
ये अनर्थों के विषय में प्रभुपद बता रहे, ये जो बताया कुछ बातों को विश्वास दूर कर देना चाहिए, ये अनर्थों के विषय में बताया गया, पढ़िया गया।
सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह है हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। इस तरह मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्तियों को त्याग देता है। दूसरी हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह सब भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण है। इस अध्याय में प्रथम पांच श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है और छठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है।
उच्चतम योग समाप्त हो द्रौपद, तो ये अनर्थ है वो निवृत्ति बड़ी आवश्यक है। द्रौपद ने हिंट दिया कि सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने हृदय की दुर्बलता के नाम से सारी बात को एक में डाल दिया, लेकिन अनर्थ जो है वो बड़ा आवश्यक है। चार प्रकार के अलग अलग अनर्थ होते हैं जो अलग अलग चीज़ों से उत्पन्न होते, वो आपको भक्ति रसामृत में शायद ट्राई करेंगे उसको चर्चा करने का। तो अलग अलग अनर्थ बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं हमारी भक्ति के बाधा के रूप में। तो देर उसका सोर्सेस है, अलग अलग सोर्सेस है अनर्थ के। अनर्थ का साइंस समझना चाहिए हमें कि ये हमारी भक्ति में बाधा बनते हैं। अनर्थ नहीं जाते, कहीं कहीं जन्म लग जाते जो अनवांटेड थिंग्स है। अनर्थ का अर्थ है अनवांटेड, नहीं चाहिए। तो रुचि प्राप्त होती है, आसक्ति होती है, भाव, ये सारी अवस्थाओं में भी अनर्थ थोड़ा 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 रहता है या अचानक नहीं जाता है, लंबा प्रोसेस है अनर्थ निवृत्ति का। भजन क्रिया तक, अनर्थ निवृत्ति तक व्यक्ति ऐसे पहुंच जाता है। फिर उसका जो ग्राफ होता है ना, ग्राफ वैसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इतना इतना होता है, कभी एकदम ऊपर जाता फिर एकदम नीचे आ जाता फिर ऊपर जाता फिर नीचे। लेकिन एक बार उसको क्रॉस किया, अनर्थ निवृत्ति क्रॉस किया थोड़ा आगे, फिर बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा, बहुत तेज़ी से ग्राफ चढ़ेगा ऊपर। लेकिन ये ऐसा जंक्चर है कि वहाँ से निकलना मुश्किल होता है। अनर्थ निवृत्ति एक ऐसी जगह है वहाँ से धक्का मारना होता है। तो इसलिए भक्तों को अनर्थों से मुक्त होने के लिए थोड़ा विशेष प्रयास करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, समझना चाहिए कि मैं कौन सी गलती करता हूँ। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, भक्त लोग ऐसा समझते हैं कि आई एम द बेस्ट। संसार में जितने भी लोग हैं उन लोग के वक्त सर्वाणी भूतानी सारे फॉलिबल है, सब क्यूत है, कुटस्थ अक्षर उच्चते, मैं तो मुक्तात्मा बन गया हूँ, मैं तो भगवान की शरण ले लिया है, क्या बोलते हैं उसको, अभी चेत सुदुराचार भजते माँ मना में भाग। दुराचारी व्यक्ति भी साधु मानना चाहिए, साधु रहे हो समन्तव्य। तो मैं तो भगवान का भक्त हूँ, साधु हूँ, दामी बुद्धि हूँ, भगवान मुझे बुद्धि देते हैं, तो मैं तो लगा हूँ भगवान की शरणागत। तो मेरे तो कभी फोन ते प्रति जाना ही नवे भक्त प्रणश्यति, अर्जुन घोषणा कर दे मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता, तो मेरा तो नाश होने वाला है ही नहीं। मुझे तो कोई कुछ भी कहा, मेरा कोई बाप भी बाका नहीं कर सकता, मैंने मारे कृष्ण रखेंगे, राखे कृष्ण मारेंगे, मेरा तो कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। इसलिए जो मैं सोचता हूँ मैं बोलता हूँ इस अल्टीमेट ट्रूथ, यू नो। अरे भाई तुम्हारे तुम्हें भी तो कोई आईना दिखाने वाला चाहिए ना कि भाई तुम्हारा कहाँ पहुँचे हो, तुम्हारा एनालिसिस कौन करेगा कि तुम भक्ति में कहाँ पहुँचे हो, you know? गुरु करेंगे, लेकिन तुम कहाँ जाते हो गुरु के पास, सुनते भी नहीं उनकी बात, you know? और गुरु का आप वाणी से संग करते हो तो ठीक है, अगर बापू का तो संग मिलता नहीं आपको, तो वाणी से संग भी इतना नहीं कर पाते, तो क्या करना चाहिए फिर, साधु संगत, भक्तों की संगत में जाओ और अपने हृदय को बात खोलो। प्रतिरक्षण के बिना भक्ति में आगे बढ़ना मुश्किल है, असंभव है। छह प्रकार के जो है ना प्रतिरक्षण, उसके बिना भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। जब भक्तों के साथ चर्चा करो कि मैं किस तरह से आगे बढ़ सकता हूँ, हो सकता है कहीं पर आप गलत हो, है ना, हो सकता है आपकी विचारधारा में कहीं कमी हो, बात करना चाहिए भक्तों से, इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। और जब ये भावना चली जाती है, जब भक्तों में इस प्रकार की भाव नहीं रहती कि अब दूसरे भक्तों से हृदय खोल के बात की जाए, ये भावना चली गई, हो गया उसका कल्याण। अभी उसको आगे बढ़ना मुश्किल हो गया भक्ति में, या तो आगे तो नहीं बढ़ेगा, हो सकता है नीचे जा सकता है, ऊपर तो नहीं जा सकता। ऊपर तभी जा सकता है अगर गुरु कोई स्पेशल कृपा करे, बाकी तो वैसे अपने आप से नहीं होगा। तो ये पुरुषोत्तम योग बड़ा पवित्र अध्याय है। अभी पुरुषोत्तम मास आने वाला है इस महीने, इस साल में, तो पुरुषोत्तम मास में रोज पुरुषोत्तम योग के 20 श्लोकों को बोलना, ऐसा व्रत होता है, तो रोज 20 श्लोकों का उच्चारण करना चाहिए। 15वां अध्याय और 16वां आगे वाला जो अध्याय है उसमें असुरी देवी प्रकृति, तो देवी प्रकृति और असुरी प्रकृति का वर्णन भगवान करेंगे 16वें अध्याय में, उसकी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट टाइम। स्टॉप हियर, सॉरी थोड़ा एक्सप्लेन किया लेकिन फिनिश करना था इसलिए।